यहाँ इस प्रातः फ्लैग स्टाफ में मैं अपनी पहली बार के आने के विषय में सोच रहा था। मैं समझता हूँ ये लगभग 38 वर्षों संभव है, 40 वर्षों पहले मैं पहाड़ पर चढ़ने के विषय में बात कर रहा था। वहाँ बर्फ नहीं थी, परंतु मेरी छोटी मॉडल टी वहाँ कठिनाई से भी पहाड़ पर ना चढ़ सकी। ये 30 मील प्रति घंटा जा सकती थी, परंतु ये इधर से 15 और उधर से 15, आप जानते हैं हमारी कुछ सड़कें वहाँ थी और ये एक बहुत ही भाई कॉल नहीं, ये छोटी कविता के विषय में कह रहे हैं जो मैंने कभी अपनी फोर्ड पर लिखी थी। भाई कॉल देने के लिए ये अच्छा स्थान नहीं है, इसलिए हम बहुत ही आभारी हैं और इस प्रातः मेरे पास बहुत सी अच्छी गवाहियां हैं। इन भाइयों से सुन रहा हूं, कुछ लोगों से मिला हूं और यहां पर एक सेवक था जो यहां बोला, एक छोटा स्पेनिश भाई जिसने छोटे लड़के को गाने का समय, क्या ये 60 वर्ष के लड़के के लिए शानदार नहीं था? ओ छोटी अच्छी आवाज जो मैंने कभी नहीं सुनी, इस प्रकार का छोटा लड़का। अब ये भाई लोग ये भूल गए, परंतु इसने आपके नगर में सभा आयोजित की। मैं सोचता हूँ वहाँ चर्च ऑफ गॉड या असेंबली ऑफ गॉड में, असेंबली ऑफ गॉड, वो असेंबली ऑफ गॉड में, और मैं निश्चित हूँ कि वे आपकी उपस्थिति की सराहना करेंगे। भाई सभा कितने समय तक चली? रविवार से रविवार रात्रि। श्रीमान, आज रात्रि गाने की प्रेरणा, आप सबका इस सभा में स्वागत है, आज रात्रि 7:30 बजे। श्रीमान, आज रात्रि गाने की प्रेरणा, आप सबका इस सभा में स्वागत है, आज रात्रि 7:30 बजे। और भाई आराधनालय कहाँ पर है, आप बताएंगे ये कहाँ है? 113 वेस्ट क्ले स्ट्रीट, ठीक फ्लैग स्टाफ नगर में। और मैं निश्चित हूँ कि आप सब, क्या ये छोटा लड़का आपके साथ है?
नहीं,
इसके पिता गाएंगे। तुम गाते हो क्या? तुम गाते हो? अच्छा, ये अच्छा है, मैंने ये ठीक अनुमान लगाया एक बार के लिए। अच्छा, ये बहुत ही कम देखने में मिलता है, परंतु ये अक्सर यदि परिवार में एक प्रतिभा है मैं समझता हूँ, और ये औरों से मिलता है, इसलिए इनके पास उपवास और प्रार्थना, अब ये तो बहुत ही अच्छा है। अब आप जानते हैं यदि अमेरिका सब मिलकर, हमारे सारे अमेरिकन परिवार इस प्रकार के थे तो वे सारी पुलिस को सेवा मुक्त कर देते, सहस्त्र शताब्दी आ जाती, क्या नहीं होता? तो ये ठीक पहले वर्ग में होता, ये ठीक बात है, सारी मृत्यु धूमिल हो जाएगी, सारी बीमारियां, दुख, सारी निराशाएं, और हम मसीह के साथ होंगे, इसलिए हम आनंदित हैं। और मैं ये शानदार गवाहियां सुनता हूं, और पहली बार भाई अर्ल से मिलने का सौभाग्य मिला, और बीती सांझ मैं उनकी पत्नी से बातें कर रहा था और उन्हें बुलाया गया और चंगी हुई। बहुत सी बार सभाओं में कहा कि अंतिम सभा में वे प्रचार मंच पर थीं, इसलिए हमें एक प्रकार से थोड़ा सा मनोरंजन का आभास देता है। भाई अर्ल मुझे याद नहीं आया, यद्यपि मैंने उनसे कहीं हाथ मिलाया था, और मैं बीती रात्रि खिड़की पर बैठा था और उनके आने की राह देख रहा था, और एक बड़ा लंबा व्यक्ति ऊपर आया, काली मूछें थी, मैंने कहा वो आ गया, और फिर जब मेरे पुत्र बिली ने कहा ओ नहीं, कहा ये भाई अर्ल नहीं है, वे इस व्यक्ति से काफी छोटे हैं, इसलिए फिर बीती सांझ में बहन अर्ल से मिला और इस नगर में यहाँ उनके सुंदर घर में होने का सौभाग्य मिला। ये अच्छा स्थान है, मैं इसे सदा फ्लैग पोल कहना चाहता हूँ बजाय फ्लैग स्टाफ के, यहाँ पहाड़ की चोटी पर देखा। और मैं आपको बताता हूँ, यदि यहाँ कोई टेक्सास से है, अब आप घमंड करते हैं, मैंने बीते कल ट्यूसान 72 या 74 पे छोड़ा वहीं कहीं, और यहाँ इस प्रातः बड़ा कोट पहने हूँ जो उन्हें टेक्सास में मिला, हमें एरिजोना में मिला, क्या हमें नहीं मिला? ठीक बात है, हम ठीक यहाँ पर हैं। ये संगति का समय, बूढ़े डॉक्टर बॉसफोर्थ, मेरे मित्र, आप में से बहुत से भाई बॉसफोर्थ को जानते हैं, ये एक बहुत ही संत बूढ़े व्यक्ति हैं, और इन्होंने एक बार मुझसे कहा, इन्होंने कहा भाई बर्नम आप जानते हैं फेलोशिप क्या है? मैंने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ भाई बॉसफोर्थ, कहा ये दो व्यक्ति एक नाव में, इसलिए इन्हें थोड़ा साझा होना है, इसलिए यही संगति है, हम लेन देन करते, एक दूसरे से साझेदारी करते। भाई कॉल विलियम के साथ और बाकियों के साथ, भाई आउटलॉ, वो एरिजोना के आरंभ के लोगों में से एक जिन्होंने मेरी सभाओं का जिम्मा लिया, भाई जिमी आउटलॉ, और तभी से ये अति प्रिय भाई हैं, और हम आप सबके लिए आनंदित हैं। वे सेवकगण और भाई लोग जिनसे हम यहाँ आसपास में मिलते हैं, मेरे पास सबसे हाथ मिलाने का समय नहीं है जैसा कि मैं चाहता हूँ, परंतु ये संगति है जहाँ हम एक साथ मिलते हैं, ये मुझे फीनिक्स की बेदारी सभा को याद दिलाता है। जब से ये पहली सभा आरंभ हुई, मेरा ये सौभाग्य था कि इन सभाओं को व्यवस्थित करने में सहायता करूं और इनमें बोलूं। और केवल यही संस्था है जिससे मैं संबंध रखता हूं। ये कोई विशेष संस्था नहीं है, ये तो संगठन है जो लोगों के मध्य में कार्य करता है। और आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर इस प्रातः हैं, जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन फुल गॉस्पल की संगति से संबंध नहीं रखते, फुल गॉस्पल, यदि आप विश्वास करें तो मेरे शब्द को लें। ये बहुत ही अच्छे लोग के झुंड, एक झुंड है। और सेवक भाइयों से आपके कलीसिया के विरुद्ध नहीं है, ये आपकी कलीसिया के लिए है। और कलीसिया में ये इनके अपने विधि का एक स्थान है। ऐसा हुआ चारों ओर दृष्टि डालते हुए इस प्रिय महिला को जिसने कुछ क्षण पहले गाना गाया। मैंने इस गाने को बहुत बार सुना, परंतु ये महिला इसे ठीक आवाज में गाती है, आप जानते हैं, बिना चीखते हुए। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है महिला, ये बहुत ही अच्छा गायन। कहा कि ये सेवक की पत्नी थी। और भाई, आपको प्रति रात्रि सोने के समय गवाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा गाना था। मैं इसकी सराहना करता हूँ। और इस प्रातः मुझे एक प्रकार से स्मरण आता है एक छोटी कहानी। मुझे शिकार और मछली पकड़ना पसंद है, और ये भी कारण है कि मैं यहाँ एरिजोना में हूँ, ताकि शिकार और मछली पकड़ूं, और मैं ये पसंद करता हूँ। इसलिए एक बार मैं न्यू हेमिस्फीयर में मछली का शिकार कर रहा था, और मेरा अनुमान है मेरे यहाँ बहुत साथी हैं जो मछली का शिकार पसंद करते हैं, दोनों पुरुष और महिलाएं भी, हम सभी इसे पसंद करते हैं। इस प्रकार से मेरे पास एक छोटा तंबू था, मैं उसे ऊंचे पर ले गया ऊपर, जहां आप जानते हैं भारी लोग या ऐसे लोग वहां ऊपर नहीं चढ़ सकते। और वहां बहुत से अच्छे छोटी नदी के महाशेर मछलियां हैं, और भूरे स्क्वायर टेल, कट थ्रोट और ओ भरे हुए हैं। ये छोटे स्वच्छ नाले के ऊपर पहाड़ की चोटी से न्यू स्फीयर से आ रहा है, और छोटी महाशेर हो सकता है 14 या 16 इंच लंबी, उनमें से बहुत सी, उन्हें पकड़ने का आनंद है, फिर उन्हें छोड़ देना। यदि मुझे पसंद आती है तो एक खाता हूँ, आप समझे, उसे अंदर लाओ। इस प्रकार से मेरे पास ये पुरानी छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई थी, और हर बार मैं अपनी डोरी फेंकता। मेरे पास एक छोटा रॉयल कोचमैन था, मुझे इसी से ही उसमें घुमाकर फेंकना था, मैं बंसी में आसपास की झाड़ी में उलझा लूंगा। और मैंने सोचा, ठीक है, मैं कुल्हाड़ी लेने जा रहा हूँ, और मैं प्रातः वहाँ जाऊँगा और उन झाड़ियों को छाट दूंगा, ताकि इसमें मेरी डोरी न उलझे। ओ, मैंने पीछे मुड़कर छोटे पुराने बीवर की बाड़ को देखा, और वे वहीं पड़े थे, और कोचमैन उन पर आए इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब सारी रात्रि मैं अपने बालों को उतार लिया करता था, परंतु अब मेरे पास उनके लिए पर्याप्त बाल नहीं है, वे कैसे इस पर ध्यान देंगे। और इस प्रकार से उस प्रातः मैं उठा, ये छोटी कुल्हाड़ी ली और इन झाड़ियों को काट डाला, और मेरे पास नाश्ते के लिए 3 या 4 थे, और वापस आ गया। और मैं अच्छा खाना बनाने वाला नहीं हूँ, मैंने अपनी पत्नी को बताया कि बिना छलकाए मैं पानी नहीं उबाल सका, इसलिए आप जानो खाना बनाना बहुत ही खराब काम होगा। इस प्रकार से मार्ग पर वापस आते हुए वहाँ एक भालू माँ और उसके 2 बच्चे थे, और वो मेरे छोटे तंबू में घुस गए। आप किसी चीज को तोड़ फोड़ की बातें करते हैं, आप नहीं जानते कि चीजों को कैसे तोड़ा फोड़ा जाता है, जब तक आप एक भालू को तंबू में ना घुसने दें। ये नहीं कि वे क्या बर्बाद करते हैं, वे क्या खाते, मेरा अर्थ ये जो वे बर्बाद करते हैं। मेरे पास एक स्टोव था, ये चरवाहों वाला छोटा स्टोव वहाँ था, और वे इस छोटे स्टोव पर चढ़ गए और ऊपर नीचे कूदने लगे। आप पाइप के खड़खड़ाने की आवाज सुन सकते हैं, और दबाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप जानते हैं। और जब मैं ऊपर आया, मेरे पास छोटी पुरानी 22 की बंदूक वहाँ रखी थी, परंतु ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों में थी। और आप जानते हैं, जब मैं ऊपर आया तो बूढ़ी माँ एक और भाग गई और अपने बच्चों को आवाज दी, एक तो ठीक प्रकार से पीछे पीछे चला गया, परंतु छोटा वाला बैठा रहा। ये मई में बाहर निकलते हैं, मेरी तरफ इस प्रकार से पीठ उचकाए बैठा था, और मैंने सोचा ये क्या कर रहा है। फिर उसने मेरी ओर देखा, मैंने पेड़ की तरफ देखा कि कितनी दूर है, क्योंकि ये आपको खरोंच मार सकते हैं, आप जानते हैं, वे छोटे छोटे, आप कुछ नहीं कह सकते, आप जानते हैं। थोड़ी देर तक मैंने माँ पर ध्यान रखा, वो निरंतर बुला रही थी और चिड़िया के समान शोर कर रही थी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। इस प्रकार से वो उस बच्चे को बुला रही थी, और वो बच्चा नहीं आएगा। मैंने अपनी बंदूक के विषय में सोचा, और मैंने सोचा यदि मैं दौड़कर अपनी बंदूक लेकर यदि मैं माँ को गोली मार दूं, तो ये दोनों जंगल में अनाथ हो जाएंगे, और मैं इसका दोषी नहीं होना चाहता। और उसके आक्रमण के सामने ये 22 एक प्रकार से छोटी रहेगी, आप जानते हैं, और कभी कभी ये चलती नहीं, और 3-4 बार चढ़ानी पड़ती है कि चले। इसलिए मैंने सोचा मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, यदि वो मुझ पर आती है मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और छोटी छड़ी लेकर उसकी नाक पर मारूंगा। उनकी नाक बहुत कोमल होती है, और वे चिल्लाकर नीचे उतर जाते हैं, आप जानते हैं, और आपको छोड़ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, परंतु उस छोटी की जिज्ञासा, ओ, इस प्रकार से बैठा था, और मैंने सोचा ये क्या कर रहा है। इसलिए मैं आसपास खिसकता रहा, उसे देखता रहा। देखिए, थोड़ा आगे बढ़कर पेड़ के पास आकर, क्योंकि वो निरंतर उस बच्चे को बुला रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। देखिए वो छोटे वाले ने क्या किया। अब मुझे छोटा केक यानी फ्लैप जैक पसंद है, आप इसे यहाँ कहते हैं। नीचे दक्षिण में हम इन्हें फ्लैप जैक कहते हैं। मैं इसे अच्छा नहीं बनाता हूँ, परंतु मैं खाता अच्छी तरह से हूँ। आप जानते हैं मैं बैप्टिस्ट था और मैं छिड़काव पसंद नहीं करता, मैं वास्तव में डुबाना पसंद करता हूँ। वास्तव में उन पर राब डालता हूँ। मेरे पास राब का डिब्बा था, लगभग इतना ऊंचा और लगभग आधा गैलन की बाल्टी मेरे फ्लैप जैक की और वहाँ पर थी। और वो छोटा, आप जानते हैं, भालू मीठा पसंद करता है। जैसे भी हो, उसने राब की बाल्टी खोल ली थी और वो वहाँ इतने चौड़े पंजे के साथ बैठा था और ये उसके बाहों में था और अपने छोटे पैर को नीचे पटक रहा था और इस प्रकार से चाट रहा था, आप जानते हैं, ठीक है, और अपनी छोटी जुबान चाट रहा था। और मैंने आरंभ किया, और यदि मेरे पास कैमरा होता तो आज प्रातः मुझे ये दिखाना अच्छा लगता, आप देखते। और वो अपना छोटा पांव उसमें डाल रहा था इस प्रकार से और चाट रहा था, और मैंने शोर किया, वहाँ से हटे इस प्रकार से। उसने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार से चाटता रहा। उसने सारी बाल्टी से अपने आप को तरबतर कर लिया था और मैं उस पे इस प्रकार से चिल्लाया और उसने घूमकर मेरी ओर देखा इस प्रकार से। वो अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था, वो राब से पूरा तर था, आप जानते हैं, उसकी आंखों पर, छोटे पेट पर पूरा राब से तर था जितना वो हो सकता था। और फिर थोड़ी देर पश्चात वो एक और डगमगाता हुआ चला गया और अपनी माँ के पास जा पहुँचा और वे उसे झाड़ियों में ले गए और उसे चाटना आरंभ कर दिया। वे बाल्टी के पास बैठने से डरे, परंतु वे उसे चाट सकते थे। और मैंने कहा, क्या ये पुराने पेंतिकोस्तल की सभा जैसा अच्छा नहीं है? अच्छे और मीठे पदार्थ से भरा हुआ, वे बाहर जाते हैं और कोई उसमें से चाटता है। ये वास्तविक संगति की सभा है। हम बस इस प्रकार से आते हैं, अपने हाथ बाल्टी में डालते हैं, हम में से प्रत्येक कोने तक परमेश्वर की आशीषों में। मैं निश्चित हूँ कि आप इसे असेंबली ऑफ गॉड की बेदारी सभा में जो नीचे हो रही है उसमें पाएंगे। प्रभु आपको वहाँ आशीष दे। उस दिन फीनिक्स में कहा एक छोटा, मैं आशा करता हूँ ये धर्म विरोधी नहीं होगा, सेवक पर एक चुटकुला जो हर प्रातः मंच पर पक्के 20 वर्षों से प्रचार करने जाता था, वो 20 मिनट प्रचार करेगा और फिर समाप्त। इस प्रकार से वे नहीं समझ सके ये क्यों था। और इस प्रकार एक प्रातः उसने लगभग 4 घंटे प्रचार किया और डीकन ने उसे टेलीफोन किया और कहा, पास्टर, हम आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं, हम सोचते हैं कि आपके संदेश शानदार हैं। और कहा, जैसे डीकन सभा जानती है, हमने आप पर ध्यान दिया है कि हर रविवार प्रातः आप ठीक 20 मिनट प्रचारते हैं। और कहा, इस प्रातः 4 घंटे, कहा मैं समझ नहीं पाया। कहा, भाइयों मैं आपको बताऊं, उसने कहा, हर प्रातः जब मैं प्रचार करने जाता हूं, जब आप मुझे प्रचार मंच पे बुलाते हैं और मैं बंद कर, मैं जीवन रक्षक गोली अपनी जुबान के नीचे रख लेता हूं। और कहा, 20 मिनट में जब जीवन रक्षक गोली खत्म हो जाती है, मैं समाप्त कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि समाप्त करने का समय हो गया, आज प्रातः गलती से मैंने बटन रख लिया। पॉल विलियम और जोएल रोज, मेरे वास्तविक भाई और मित्र, वे लोग उस दिन नगर में गए और मुझे देने के लिए इतना बड़ा बटन लिया, और परंतु आज प्रातः मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ होने के लिए हम आभारी हैं। अब यहाँ कोई है जो डॉक्टर ली वेल को जानता है? मैं नहीं सोचता, संभव है नहीं। वो एक बैप्टिस्ट प्रचारक थे, उनके पास डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री है। आरंभ में वे एक हाई स्कूल के अध्यापक थे और वे बहुत ही अच्छे विद्वान पुरुष हैं। और मेरी 7 कलीसियाई कालों के टेप मैंने उनको भेजे हैं कि उनको व्याकरण में करें, क्योंकि मेरी पुरानी केंटकी एंड हिट हैंट और टोट और कैरी और फेच ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो किताबें पढ़ते हैं, इसलिए वे इसे मेरे लिए व्याकरण में कर रहे हैं। और उसे देखने के बाद कई बार इसे मेरे पास भेजा और कहूँ पुस्तक जो कि अब छापे खाने में है, लगभग 3 या 4 वर्षों के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, कहा, क्या मैं एक पुस्तक लिखूं, मेरी टिप्पणियां? और मैंने कहा, हाँ ठीक है भाई ली। और मैंने सोचा, तब उन्होंने कहा, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, कहा ये बेचने के लिए नहीं है, छोड़ दिया। मैंने कहा, अच्छा तो मैं निश्चित हूँ ये ठीक है, समझे। और इस प्रकार उनके पास लगभग 10 लोग खर्चा उठाने वाले थे, उनको इसका मूल्य लगभग $1500 पड़ा। मैं समझता हूँ कि उनमें से 10,000, और इसलिए हमें मिल गई। ये 1-2 दिन पहले ही प्रेस से निकली है, कल हमें 2 या 3 मिली हैं, और बिली उन्हें लेकर आया और उन्होंने उन्हें दे दिया। अब मैंने ये कभी नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानता कि उसने क्या कहा, परंतु मैं ये विश्वास से है, परंतु मैं निश्चित हूँ यदि आप एक लेना चाहते हैं, यदि अब बस हमें लिखें तो ये आपको मुफ्त भेजेंगे, समझे। ये 20वीं सदी का भविष्यवक्ता कहलाई। और तब मैंने इस पर चित्र पर ध्यान दिया, किताब के पहले पन्ने पर, ठीक है, आप में से बहुत से लोगों के पास ये चित्र है और इसे देखा है, जो कि प्रभु के सरदूत की चित्र ह्यूस्टन टेक्सास में लिया गया, परंतु उन्होंने इसका एक भाग काट दिया। तब मैं यहाँ पीछे देखता हूँ और यहाँ कितने ऐसे हैं जो यहाँ कभी एक सभा में थे। हम देखें, मैं समझता हूँ व्यवहारिक रूप में आप सब, आपने मुझे बहुत सी बार कहते सुना है कि छाया किसी के ऊपर है। अब देखिए, यदि आप बयान देते हैं और ये सत्य नहीं है तो परमेश्वर का इससे कुछ लेना देना नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर का झूठ से कोई संबंध नहीं है, परंतु जो सत्य है उसका वो समर्थन करता है। इसलिए जब उसने मूसा को बताया, जब वो उसे वहाँ पीछे जंगल में अग्नि स्तंभ पीछे जलती झाड़ी में मिला, तब वो उन लोगों को बाहर लाया और वे जो मूसा के पीछे चलेंगे यात्रा के लिए, फिर वो सीनै पर्वत पर आया, वहीं अग्नि स्तंभ, और इस बात को प्रमाणित किया कि जो मूसा ने कहा था वो सत्य था। अब परमेश्वर ये करेगा, वो सदा ये करता है। इसलिए ये ज्योति निसंदेह हम इसे परमेश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि इसका वही स्वभाव है और हर चीज जो उसने की जब वो यहाँ पृथ्वी पर था। तब ये कहा जा रहा है, ये व्यक्ति यहाँ है, मैं देखता हूँ आप पर मृत्यु की छाया है, एक काली छाया। आप में से कितनों ने ये कहते सुना? यहाँ हाल ही में एक सभा में यहाँ कोई जिज्ञासा में था, देखना चाहता था कि यदि उसका चित्र उतार सके। जब ये कहा गया था, वहाँ पास में एक महिला बैठी थी और व्यक्ति के पास कैमरा था, और मैंने कहा ये महिला जो यहाँ बैठी है श्रीमती अमुक अमुक है, जो भी हो, मैंने कहा उस पर मृत्यु की छाया है, परंतु उसको कैंसर था और उसी समय उसने चित्र खींचा क्योंकि वो पास था और ये वहाँ पर था। देखिए वो टोपी, काला कैंसर मृत्यु का उस महिला के ऊपर था। और पवित्र आत्मा फिर से बोला, अब जब उन्होंने इसे इस पुस्तक में छापा तो उन्होंने इसे काट लिया, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ लगाया है जब तक वे दूसरी और पुस्तक ना छाप लें, और इसलिए आप ये पन्ना उखड़ा हुआ देखेंगे। मैं सोचता हूँ द वॉइस ऑफ हीलिंग वालों ने ये पुस्तक छापी है और अब ये बिल्कुल मुफ्त है, और खर्चा उठाने वाले यहाँ पुस्तक के पीछे हैं जिन्होंने इसमें $1500 लगाए हैं केवल इसलिए कि इसे लोगों में पहुँचाएं, इसे लोग पढ़ें। इसलिए ये मुफ्त है और ये अच्छी छोटी पुस्तक है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें विषय वस्तु क्या है, मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, पिता ये जानता है। परंतु देखिए, मेरे लिए ये बिल्कुल सत्य है, हम इसी सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और वो ही वो सत्य है, वो यीशु है, परमेश्वर का पुत्र, वचन का सत्य, क्योंकि वो वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। तब इसने उसे सत्य बनाया क्योंकि वचन सत्य है और वो सत्य था। अब जब हम उसे इन अंतिम दिनों में वापस आता देखते हैं, परमेश्वर का ये महान कार्यवाही परमेश्वर की संसार के राष्ट्रों में फैला हुआ है, दुल्हन के लिए लोगों को एकत्र कर रहा है, ये सत्य है। वर्षों पहले उन्होंने कहा अन्य भाषा में बोलना जैसी कोई चीज नहीं है, ये निरर्थक था। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा दी और उसने इसे सत्य प्रमाणित किया, ये ठीक बात है। आज प्रातः किसी ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ ये हमारी बहन जो बालकों के साथ उनके बपतिस्मे के विषय में व्यवहार करती है। उन्होंने कहा, आप किसी को अन्य भाषा में बोलते हुए सुन सकते हैं, परंतु किसी को भाषा में गाते हुए सुनना ये इतनी सुंदर चीज थी। मुझे अपना पहला अनुभव स्मरण है, वहाँ रेडीगर के आराधनालय में फोर्ट वियाना इंडियाना में मैं बोल रहा था, चंगाई सभा ले रहा था भाई बी ई रेडीगर की मृत्यु के पश्चात, और भाई बॉसफोर्थ पॉल रेडर वहाँ थे और वो एक बैप्टिस्ट था और हम थे, इस प्रकार से हम अच्छे मित्र थे। और इस प्रकार से जबकि मैं वहाँ बोल रहा था, बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा था, उस व्यक्ति के लिए विचित्र बात थी, परंतु एक महिला एक छोटे लड़के को लाई जो कि विकलांग था, और जैसे ही वो मंच पर आया प्रभु का दर्शन आया और उसे सब कुछ बताया कि उस छोटे लड़के के विषय में क्या है, और मैंने लड़की से कहा कि मुझे इस छोटे लड़के को दे दो। अब जरा बहन की गवाही के लिए, ताकि आप देख सकें कि क्या ही आनंद है और परमेश्वर के अनुग्रह का वास्तविक घटना ये क्या कर सकता है जब ये परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करता है। देखिए, समय के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा नू के लिए आज हमारे लिए कार्य नहीं करेगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा मूसा के लिए, हम मूसा का संदेश नहीं ले सकते, मूसा नू का संदेश नहीं ले सकता था, हमारे पास इस घड़ी का संदेश है। हम लूथर का संदेश नहीं ले सकते, हम वैसरी का संदेश नहीं ले सकते, ये दूसरा समय है। परमेश्वर ने प्रत्येक युग के लिए वचन रखा है, और जैसे ही वो युग आता है वो किसी को वचन प्रकट करने के लिए भेजता है, ये सिद्ध करने के लिए कि ये सत्य है। और अब इसलिए हम उन प्रत्येक को देखते हैं, जैसे कि यीशु ने कहा वो जब पृथ्वी पर था उसने कहा तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो और तुम्हारे पुरखाओं ने उन्हें उनमें रखा है। अब मेरे लोग जैसा आप जानते हैं कैथोलिक हैं, आयरिश होने के नाते अब हम वहाँ अब वे संत पैट्रिक के विषय में बातें करते हैं। कैथोलिक उसका दावा करते हैं भाई वो भी लगभग उतना ही कैथोलिक है जितना मैं हूँ। वे जॉन ऑफ आर्क के विषय में बातें करते हैं, उन्होंने उस लड़की को जादूगरनी करके जला दिया। हम सब ये जानते हैं क्योंकि वो आत्मिक थी और दर्शन देखे। निसंदेह लगभग 100 वर्षों पश्चात उन्होंने उन पादरियों की मृत देहों को खोदा और प्रायश्चित किया और उन्हें नदी में बहा दिया, परंतु ये वो नहीं जो उन्होंने लिया, समझे। वे हमेशा चूके। मनुष्य सदा परमेश्वर की महिमा कर रहा है जो उसने किया और आगे देख रहा है कि वो क्या करेगा, और जो वो कर रहा है उसके लिए अज्ञान है। ये मनुष्य का मात्र स्वभाव है और उसने अपना स्वभाव नहीं बदला, संसार का मनुष्य। इसलिए हम पाते हैं आज हमारा संदेश जो आज हमारे पास है, बाबुल से बाहर आओ और स्वतंत्र हो जाओ और आत्मा से भर जाओ और अपने चिरागदानों को छांटो और साफ करो और ऊपर देखो, हमारा छुटकारा समीप आ रहा है। ये बातें बहुत से लोगों के लिए नहीं है जो हमारे प्रिय प्रभु का नाम पुकारते हैं और जपते हैं, परंतु फिर भी ये सब होते हुए हम लोगों के विरुद्ध नहीं है उन नामधारी कलीसियाओं के लोगों के लिए। वे ठीक अच्छे हैं, वे सुसमाचार में हमारे संबंधी हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता उसे खींच ले, और वो सब जो पिता ने मुझे दिया वे आएंगे। इसलिए हम केवल बीज बोने के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ सड़क के किनारे गिरे, कुछ विभिन्न प्रकार की भूमि में, कुछ और गिरे और 100 गुना फले। हम तो केवल बीज बोने वाले हैं, परमेश्वर ही है जो इसे निर्देश देता है जब ये गिर रहा है। और अब हम प्रार्थना करते हैं कि संभव हो इस प्रातः कि कुछ बीज कहीं गिरें जो किसी का साहस बढ़ा सकें। और एक मनुष्य मात्र समान अपनी गवाही को इस महिला के संबंध में समाप्त करते हुए जिसके विषय में मैं बोलने जा रहा था। ये महिला इस बालक को लेकर आई, एक छोटा लड़का, मैं समझता हूँ 10 या 12 वर्ष का, और हो सकता है इतना बड़ा ना हो, क्योंकि ये महिला उसे गोद में लिए थी और उसने इसे हवाले कर दिया। और फिर जब मैं बालक के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो छोटा मेरे हाथों में से कूद गया और नीचे मंच पर भाग गया, लगभग 35 या 40 हजार लोग। और जब उन्होंने पहली बार कभी देखा, माँ सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। एक छोटी एमिश लड़की, क्या आप एमिश से परिचित हैं? मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ कोई है नहीं। लंबे बाल, वे बहुत ही अच्छे लोग और बहुत ही निर्मल और भले प्रकार के। हम जानते हैं हमारे सारे मिनोनाइटों में या एमिश और आदि आदि, हमारे पास एक भी अभिलेख नहीं कि कोई किशोर अपराध में लिप्त हो। यदि आप चाहें तो उन्हें विचित्र कह सकते हैं, परंतु हमारे घरों में कुछ ऐसा कम है जो उनके यहाँ है। कचहरी में उनका एक भी अभिलेख नहीं है कि किसी नवयुवक ने दुर्व्यवहार किया हो। वे अपने बालकों को लाते हैं, जिस मार्ग से लाते हैं उसी से वापस ले जाते हैं। और ये महिला एक विख्यात पियानो वादक थी, एक सुंदर नवयुवती और लंबे हल्के रंग के बाल पीठ पर। और जब उसने देखा वो एमिश थी, उसे पेंटिकॉस्टल के विषय में कुछ भी मालूम नहीं और न ही मुझे, परंतु जब उसने मंच पर देखा और छोटे लड़के को जाते देखा वहाँ चलते हुए, उसने अपने हाथ हवा में उठा लिए। अब मैं जानता हूँ कि धर्मो उन्माद होता है, और मैं आशा करता हूँ मैं झुकता नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो मैं जानबूझकर गलत नहीं, मैं अनजाने में गलत हूँ। परंतु उस लड़की ने अपने हाथ हवा में उठाए और बाल उसके कंधों पर फैल गए और उसने अन्य भाषा में गाना आरंभ कर दिया और वो उस भजन को बजा रही थी, संसार का सबसे बड़ा वैद्य, तरस खाने वाला यीशु यहाँ है। और जब वो वहाँ उछली, मैं जानता हूँ सुनने में ये विचित्र लगता है, परंतु ये लड़की अन्य भाषा बोलने के विषय में कुछ भी नहीं जानती, परंतु वो अन्य भाषा में गा रही थी कि महान वैद्य अब यहाँ समीप है, तरस खाने वाला यीशु। और वो पियानो निरंतर बजता रहा, महान वैद्य अब यहाँ है, तरस खाने वाला यीशु। वे वेदी पर जमा हो गए और बालकनी से होते हुए नीचे लोग चिल्ला रहे थे। वो लड़की वहाँ खड़ी हुई थी, इस प्रकार से अपना मुंह ऊपर उठाए हुए अन्य भाषा बोल रही थी और पियानो की सफेद सुरपट्टी अब भी चल रही थी। महान वैद्य अब यहाँ पर है, तरस खाने वाला यीशु। वो रोने वाले हृदयों से आनंद की बातें करता, कोई दूसरा नाम नहीं केवल यीशु। ओ जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना जो हमारे लिए रखा है। आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ, हम क्यों बदले में कुछ स्वीकार करें या कुछ चीज जो कि बनावटी विश्वास हो, जबकि स्वर्ग मूल वस्तुओं से भरा हुआ है। परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ्य जो कि प्राण को स्वतंत्र कर सकती है, जो कि हमारे लिए कुछ कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब बहुत सी बातें हैं, मैंने आपको अभी नहीं बताया। इस पुस्तक को कहाँ से प्राप्त करें? देखिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 325 जेफरसन विले, और यदि आप लिखेंगे क्यों, वे इसे आपको भेज देंगे, या जो भी हो, एक सभा में आए, वे वहाँ दे रहे होंगे। मैं संगति के बहुत अच्छे समय के लिए आभारी हूँ, और इस प्रातः मैं छोटी सी कहानी के विषय में सोच रहा था, जो कि मैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन की सभा में बताता हूँ, जकई के विषय में। आप में से बहुत सोने मुझे ये बताते सुना है, इस विषय में कैसे वो छोटा व्यक्ति, उसने विचारों को परखने का विश्वास नहीं किया। और प्रभु के निसंदेह मैं समझता हूँ कि जैसे हम हर युग में आप एक वास्तविक देखते हैं और फिर आप नकलों को देखते हैं और हम इसे उसके साथ रखते हैं, परंतु अच्छा पवित्र वचन पर सही सोचने वाला मनुष्य इसे समझता है, देखा, जो कि हम और कोई मतलब नहीं। जब श्रीमती एमी सिंपल मैकफर्सन जब वो यहाँ पृथ्वी पर थी, उसकी सेविकाई में वे ये कहते थे कि हर सुंदर प्रचारक महिला के वे पंख होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, या इस प्रकार से उड़ते हैं और बाइबल को ले लेते हैं। जरा देखिए, आज बिली ग्राम देश में है, परंतु आप जानिए बिली ग्राम कभी भी आपका स्थान नहीं ले सकता। मैं बिली का स्थान कभी नहीं ले सकता, वो मेरा स्थान नहीं ले सकता, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता, और आप मेरा नहीं ले सकते। आप परमेश्वर में व्यक्तिगत हैं। परमेश्वर ने आपको आपके अनुसार बनाया है किसी उद्देश्य के लिए। यदि हम अपना स्थान जान सकें और वहाँ बने रहें, यदि हम कुछ भिन्न करने का यत्न करें, फिर देखिए कि हम किसी और के क्षेत्र में हैं, जिससे कि हम परमेश्वर के चित्र को बिगाड़ रहे हैं। हम बिली ग्राम जैसे को लेते हैं जो कि आज नामधारी संसार में है, जैसा कि वो है। यदि हम इसे फुटबॉल का खिलाड़ी कहेंगे, आज गेंद उसके पास है। अब यदि अपने ही साथी से गेंद लेना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम में गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे हैं। अपने आदमी की रक्षा करें, देखा, उसे सुरक्षा देते रहें, बाकियों को भी, ताकि वो दौड़ सके। कुछ देर बाद हम अंक बना लेंगे और यीशु आ जाएगा, और फिर ये सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। अब मैं इस व्यक्ति जकई के विषय में कहने जा रहा हूँ, और मैंने इसे इस पेड़ पर पाया। आप जानते हैं, अपने चारों ओर पत्ते खींच रहे थे, और जब वो पेड़ के नीचे आया, वो यीशु के साथ घर गया, और मैंने कहा वो फुल गॉस्पल बिजनेसमैन सभा का सदस्य हो गया। यदि यहाँ कोई जकई है इस प्रातः, मैं आशा करता हूँ कि आप वो अच्छी सलाह लेंगे और फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के सदस्य हो जाएंगे। आप कहते हैं फुल गॉस्पल? जी हाँ श्रीमान, केवल यही चीज है जो यीशु प्रचारेगा, पूर्ण सुसमाचार ही होगा। ये सही बात है, क्या ये ठीक बात है? निश्चय ही, क्योंकि वो पूर्ण सुसमाचार था। ये ठीक बात है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। परंतु अब यहाँ मेरे पास कुछ पवित्र लेख लिखे हुए हैं, एक छोटे साधारण मूल पाठ के। ये मुझे कुछ मिनटों से अधिक ना लेगा, यदि आप मेरे साथ थोड़ी देर सहें। और इसके पहले हम ये करते हैं, अब हमारे जमा होने की छोटी सी संगति, और भालू के हाथ में बाल्टी होने के विषय में, और आदि आदि। अब हम इस सब को एक और हटा दें और थोड़ा सोचें कि हम परिचित हो रहे हैं, और अब हम चाहते हैं कि वचन के गहरे भाग में प्रवेश करें। जैसे कि हम इस ओर चलते हैं, अब हम अपने सिरों को झुकाएं, क्योंकि वचन की पहुंच का हमें कोई अधिकार नहीं बिना लेखक के बात करे। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ हमारी बंद आंखें, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे हृदय हमारे सिरों के साथ झुके हुए हैं। मुझे आश्चर्य है, जब मैं अपनी आंखें उठाता हूं और भक्त मंडली की ओर देखता हूं, यदि यहां कोई है जो कहता है अपने हाथों को उठाते हुए, सेवक भाई मुझे अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना, मैं आज आवश्यकता में हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब वो आपके हाथों को देखता है, वो जानता है कि आपके हाथ के नीचे क्या है, आपके हाथ में वो इसे प्रदान करेगा। ये मेरी प्रार्थना है।
प्रिय परमेश्वर, जैसे कि इस इमारत के लिए आभारी हैं कि हम आपके नम्र बालक यहाँ इसके नीचे एकत्र हो सकते हैं, और बातें और संगति, स्वयं से हम मसीह को समर्पित करना चाहते हैं और अधिक से अधिक उसके समान होने की इच्छा करते हैं। हम पास बैठे भाइयों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु, व्यक्ति जो मुझसे अधिक यहाँ खड़े होकर वचन देने में अधिक योग्य है, आपका अयोग्य दास, परंतु ये मेरे भाग में आया। और पिता, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, यदि मैं कुछ ऐसा कहूँ जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो, कि इसके पहले मैं कहूँ आप मेरा मुंह बंद कर दें, जैसे कि आपने सिंहों के मुंह एक दिन बंद किए ताकि वे डैनियल को परेशान ना करें। और पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रत्येक को स्मरण रखें, हर सेवक को, और ये बेदारी जो इस नगर में चल रही है प्रभु, नीचे वहाँ असेंबली ऑफ गॉड की। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वहाँ इस प्रकार की बेदारी लाएंगे कि सारा नगर परमेश्वर की सामर्थ से हिल जाए, कि सारे शराब खाने आवारा बच्चे जो सड़कों पर घूमते हैं परमेश्वर के सिंहासन के पास लाए जाएंगे और उसकी भलाई और पवित्र आत्मा से भर जाएं। स्वर्गीय पिता, इसे ग्रहण करें। और आज हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की जो यहाँ बर्फबारी से बचने के लिए यहाँ लाए गए हैं, महान पवित्र आत्मा उनके हृदय पर आए और उनसे भेदपूर्ण रीति से बात करे। संभव है कुछ छोड़ गए जिन्होंने कभी आपका स्वागत किया प्रभु, परंतु अब छोड़कर चले गए, प्रभु उन्हें वापस ले आए इस प्रातः। और हम इस सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई अर्ल और उनकी पत्नी के लिए और दूसरों के लिए प्रभु से प्रदान करें। अब हमारे लिए जीवन की रोटी तोड़ें, जैसे कि हम वचन के पन्नों को खोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल व्यक्तिगत अनुवाद नहीं। परमेश्वर को आवश्यकता नहीं कि हम उसके वचन का अनुवाद करें, वो अपना अनुवाद स्वयं है। एक दिन उसने कहा उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो हुई। और अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, कोई मतलब नहीं संसार क्या कहता है। उसने ये किया, उसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं, वो अपने वचन का स्वयं अनुवाद करता है, उसे जीवित करके उसे वैसे ही प्रमाणित करता है। हमारे हृदयों में आ प्रभु यीशु और हमें अनुवाद कर जिन बातों की हमें आवश्यकता है। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यदि आप बाइबल को पलटे, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पास अभी भी संदेश नहीं था जिस पर मैं बोलने का यत्न किया हो कि मैंने कभी भी पहले वचन ना पढ़ा हो, क्योंकि मेरा शब्द असफल हो जाएगा। मैं मनुष्य हूँ, उसका वचन असफल नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है। इसलिए एक छोटा मूल पाठ निकालें और हम 30-40 मिनटों में बाहर हो जाएंगे, प्रभु ने चाहा तो। अब प्रकाशित वाक्य पर हम प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय निकालना चाहता हूँ, 14वें पद से आरंभ करके, और मैं इसका एक भाग पढ़ना चाहता हूँ। ये लुदिकिया कलीसिया काल को संदेश है, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं समझता हूँ अधिकांश लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं और बाइबल पढ़ने वाले विश्वास करते हैं। इस पर आमीन कह सकते हैं कि हम लोग लुदिकिया कलीसिया काल में हैं, क्योंकि ये अंतिम युग है। इस समय कलीसिया की दशा पर संदेश सुनिए। और लुदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगरम हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक मूल पाठ लेना चाहता हूँ, एक छोटा विषय, दरवाजे में दरवाजे कहलाया। दरवाजे में दरवाजे। अब ये बहुत ही दरवाजे में दरवाजे तीन शब्द हैं, दरवाजे में दरवाजे। आप मुझसे कह सकते हैं भाई यहाँ लगभग 100 लोग हैं, यहाँ क्या आप नहीं सोचते कि छोटा विषय है जबकि आपके समक्ष लगभग 100 प्राण हैं? ये सत्य हो सकता है कि विषय छोटा है, परंतु ये विषय का आकार नहीं जो अर्थ रखता है। ये जो ये है, विषय जो कहता है वो अर्थ रखता है। जैसे कि मैं ये विश्वास करता हूँ, ये लुईविल केंटकी में था कुछ समय पहले। एक छोटा लड़का ऊपर अटारी की दुछत्ती में रखे हुए बॉक्स में खदड़ बदड़ कर रहा था और पुराने ढंग के डाक टिकट देखने लगा। पहली बात जो उसके मस्तिष्क में आई कि वो इससे आइसक्रीम ले सकता है। वहाँ नीचे गली में टिकट रखने वाला था, इसलिए वो उसे लेकर जितनी जल्दी हो सका गया और कहा कि तुम मुझे इस डाक टिकट के बदले में क्या दोगे। संग्रहकर्ता ने उसे देखा, वो एक प्रकार से धूमिल सा हो गया था। उसने कहा, मैं तुम्हें $1 दे दूंगा। ओ, ये तो अच्छा सौदा है, वो तो इसे सिक्के में दे देता। और इसके लिए तो बहुत ही प्रसन्न था कि आइसक्रीम ले लेगा, परंतु ये तो डॉलर में ही बिक गया। संग्रहकर्ता ने इसे $500 में बेचा और बाद में मैं नहीं जानता वो कहाँ गया, ये $700 में गया। आप देखते हैं, वो कागज का छोटा टुकड़ा कुछ विशेष नहीं था, बस एक टुकड़ा जिसे कि आप फर्श पर से भी नहीं उठाएंगे। परंतु ये कागज नहीं जो था, ये उस कागज पर था जिसका मूल्य था। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के साथ यही है, ये वो कागज नहीं कागज का मूल्य या उसका आकार, ये जो कागज पर लिखा है और संसार को बचाने के लिए एक ही वचन पर्याप्त है यदि इसे उस प्रकार से ग्रहण किया जाए। कुछ समय पहले मैं अपने समय के महान लोगों की कहानी पढ़ी। एक महानतम राष्ट्रपति, मैं सोचता हूँ राष्ट्र के पास कभी होगा, लिंकन था। इसलिए नहीं कि वो केंटकी से था, परंतु क्योंकि वो महान व्यक्ति था, उसकी वो शिक्षा से वंचित था, परंतु फिर भी उसके हृदय में कुछ था, कोई उद्देश्य। मैं दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को पसंद करता हूँ, मैं लोगों को पसंद करता हूँ जिनके पास कुछ होता है, वे इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ना कि इधर उधर पड़े हैं, जो भी आएगा वही ठीक होगा। ओ, सीधे रहो और उस पे रहो। और लिंकन ने कभी भी अपनी शिक्षा को आड़े नहीं आने दिया, उसके पास करने को कुछ था। मैं सोचता हूँ हर मसीही को इसी प्रकार का होना चाहिए, अपने उद्देश्य को ढूंढें और जाकर उसे करें। इस सभा का प्रत्येक सदस्य केवल ये नहीं कि माह में एक बार हमारा नाश्ता होता है, ये ऐसा नहीं है, या हर शनिवार। जीवन में उद्देश्य रखो, आप कुछ करने जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको यहाँ रखा है, इस विषय में कुछ करें। हर कलीसिया का हर सदस्य, नगर में बेदारी है, ये बेदारी किसी उद्देश्य से है, हम इसमें कुछ निकालें, हम इस विषय में कुछ करें। श्री लिंकन एक मनुष्य था, एक युवा मनुष्य, वो युद्ध में था और वो आरंभ से ही डरपोक था, और उसने अपने कर्तव्य के समय वो अपने स्थान से हट गया और उसके विरुद्ध उन्होंने कुछ पाया और उसे गोली मारी जानी थी, और ओह वो ये भयानक था। और एक युवा व्यक्ति उससे इतना प्रेम करता था कि श्री लिंकन के पास गया कि समाधान पाए। उस समय वो राष्ट्रपति था यहाँ संयुक्त राज्य में, और इसलिए क्षमा के लिए उसके पास गया और उसने उससे कहा, और वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और श्री लिंकन एक लंबा दाढ़ी वाला साधारण दक्षिणी दुबला पतला, और उसने कहा, श्री लिंकन एक लड़का है जो अब से 2 दिन बाद मरने जा रहा है, गोली मारी जाएगी क्योंकि वो युद्ध के समय भाग गया। और उसने कहा, श्री लिंकन लड़का इतना बुरा नहीं है, परंतु वो सब बंदूक उसका दागना और लोग मर रहे थे और वो अधीर हो गया और वो इतना विचलित हो गया कि उसने अपने हाथ पैर फेंके और चिल्लाना आरंभ कर दिया और कहा, मैं लड़के को जानता हूँ। कहा, श्री लिंकन केवल आपका नाम इस कागज के टुकड़े पर उसे बचा सकता है, क्या आप ये करेंगे? संदेह नहीं, इस मसीह सज्जन ने तुरंत ही कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, अमुक अमुक क्षमा कर दिया गया, नाम के हस्ताक्षर कर दिए, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति संयुक्त राज्य। संदेश वाहक जितनी जल्दी हो सकता था वापस गया और वो जेल में गया। उसने कहा तुम स्वतंत्र हो, ये श्री लिंकन के हस्ताक्षर हैं, तुम स्वतंत्र हो। उसने कहा तुम क्यों मेरा उपहास उड़ाने आए हो, ये जानते हुए कि मैं कल मरने जा रहा हूँ। उसने कहा इसे मेरे पास से ले जाओ, तुम केवल मेरा उपहास उड़ा रहे हो और उसने इसे स्वीकार नहीं किया होगा। उसने कहा नहीं, मैं इसे नहीं चाहता। कहा तुम केवल उपहास उड़ा रहे हो। कहा यदि ये राष्ट्रपति था तो इस पर कुल चिन्ह होता और ये सही कागज पर होता। उसने कहा परंतु ये उनका हस्ताक्षर है। उसने कहा मैं उसके हस्ताक्षर को कैसे जानूं? उसने कहा तुम केवल मेरा उपहास उड़ा रहे हो, तुम यत्न कर रहे हो कि मुझे अच्छा अनुभव हो। और उसने रोना आरम्भ कर दिया, अपनी पीठ मोड़ ली। अगली प्रातः लड़के को गोली मार दी गयी। तब लड़के के मर जाने के पश्चात और राष्ट्रपति का नाम इस कागज के टुकड़े पर कि वो क्षमा कर दिया गया है तो क्या? और उन्होंने न्याय संघ में मुकदमा किया जो हमारे न्यायालयों का अंतिम है। यह हमारे न्याय संघ का निर्णय है। वे कभी कभी क्या कहते हैं, हम उनके निर्णय पसंद नहीं करते, परंतु जो भी हो हमें उसे मानना है क्योंकि यही स्तंभ है, ये अंतिम है। अब ये कहा ये निर्णय एक क्षमा तब तक क्षमा नहीं है जब तक कि उसे एक क्षमा के समान स्वीकार न किया जाए। और परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, ये एक क्षमा है यदि ये एक क्षमा के समान स्वीकार की जाए। और ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की सामर्थ है उनके लिए जो इसका विश्वास करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। कोई मतलब नहीं आप इसकी ओर देख रहे हैं और आप कहते हैं ओ ये तो जटिल ही रहा है, इसके करोड़ों अनुवाद हैं और ये सब ये किसी और के लिए हो सकता है, परंतु मेरे लिए ये अब भी परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। वो वचन के साथ स्थिर रहने के लिए कर्तव्य निष्ठ है। अब किसी दिन उसे कलीसिया का न्याय करना है और यदि वो कैथोलिक कलीसिया के द्वारा न्याय करता है जो वे कहते हैं कि वो करेगा, तो कौन से कैथोलिक कलीसिया के द्वारा? वे एक दूसरे से भिन्न है। यदि वो मेथोडिस्ट के द्वारा करता है आप बैप्टिस्ट वाले गए, यदि वो पेंटिकॉस्टल के द्वारा करता है तो आप बाकी लोग गए, परंतु वो कलीसिया के द्वारा न्याय नहीं करेगा। बाइबल ने कहा वो संसार का यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा और मसीह वचन है। आप देखते हैं हमारे पास कोई बहाना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है कि वो हमारा न्याय करता है। और कोई मतलब नहीं कि कितना छोटा है, इसके लिए एक वचन का महत्व है। प्रकाशित वाक्य 22:18 ने ये कहा है, पहले मैं उत्पत्ति से आरम्भ करूंगा। परमेश्वर ने मानव जाति को अपना वचन दिया कि अपने आप को मृत्यु, पाप, कष्ट या किसी भी बर्बादी से किलाबंद रखे। वचन की एक जंजीर, तू इस विशेष वृक्ष को ना छूना, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। और एक जंजीर अपने कमजोर जोड़ पर ही सबसे अच्छी होती है। और हमारे प्राण नरक की ओर खींचे गए इस जंजीर को पकड़े हुए, इनमें से एक टूटता है। आपको बस यही करना है। हवा ने कभी भी वाक्य नहीं तोड़ा, उसने एक वचन शैतान के द्वारा तोड़ा। वो पुस्तक का पहला था और पुस्तक के मध्य में यीशु आता है और कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, परंतु प्रत्येक वचन से, उसके भाग से नहीं कि एक यहाँ और वहाँ से, परंतु प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब वो मरा, जीवित हुआ था और स्वर्ग में चला गया और वापस आया और यूहन्ना को दिए, जो कि उसने अपने पुनरुत्थान के पश्चात कहा क्या यदि, कहा इस मनुष्य का क्या होगा? यीशु ने कहा तुझे इससे क्या यदि वो मेरे आने तक जीवित रहे, अपने जीवन को न जानते हुए, परंतु उसकी सेवकाई चलती रहेगी। और उसने उठाया, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में, और उसे सारी चीजें दिखाई जो आने वाली थी, जिसमें हम रहते हैं, यहाँ तक कि आज का पाठ। और फिर 22 अध्याय में अंतिम अध्याय 18 पर उसने कहा जो कोई भी इस पुस्तक से एक शब्द निकालेगा या इसमें शब्द मिलाएगा उसका भाग जीवन की पुस्तक से ले लिया जाएगा। समझे, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। मैं इसका विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि ये सत्य है। ये कितना छोटा है इससे कोई मतलब नहीं, ये बस इसे करने के लिए एक वचन को लेता है। इस विषय पर सोचते हुए कि ये कितना छोटा और कितना अमहत्वपूर्ण है, देखते हुए मेरे बहुत से कैनेडियन मित्र यहाँ बैठे हैं। मुझे स्मरण है मैं कनाडा में था जब राजा जॉर्ज, वो जिसके लिए मुझे सौभाग्य मिला कि उसके लिए प्रार्थना करूं, वो चंगा हो गया था। अनेका स्क्लेरिया से पीड़ित था, वो उस दिन पीड़ित था स्क्लेरियल से, या उसे पेट की गड़बड़ी भी थी थोड़ा। आप में से बहुत से कैनेडियन जानते हैं और अमेरिकन भी, परंतु उसे वहां से निकलते हुए देखते हुए, गाड़ी में बैठा था महाराजा था, उसने स्वयं को राजा जैसा व्यवहार किया। उसकी सुंदर रानी उसके बराबर में बैठी थी अपने नीले परिधान में, और जैसे ही वो सड़क पर आया, और मेरा एक मित्र और मैं एक साथ खड़े थे, और जब वो गाड़ी निकली उसने अपना सिर घुमाकर चिल्लाना आरंभ किया। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और मैंने कहा, क्या बात है? उसने कहा, भाई ब्रैनम, यहाँ मेरा राजा और उसकी रानी जा रहे हैं, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो मैंने सोचा, यदि एक कैनेडियन सरकारी अध्यक्ष नीचे सरकारी अध्यक्ष के नीचे नहीं, परंतु अभी इंग्लैंड का सरकारी अध्यक्ष और राजा निकल रहा है, ये कैनेडियन को चिल्ला सकता है और उसका सिर घुमा सकता है और रोता है। क्या होगा जब हम अपने राजा को देखते हैं और इस पर सोचते हैं, हमारा भाग रानी का होगा। तब सारे बालक विद्यालयों से छोड़ दिए गए, छोटे बालक, उन्हें छोटे ब्रिटिश झंडे दिए गए। कैनेडियन झंडा कुछ और कहलाता था। भाई फ्रेड, कैनेडियन झंडा क्या कहलाता है? यूनियन जैक। परंतु वे उन्हें छोटा ब्रिटिश झंडा लहराने के लिए देते हैं, और जब राजा निकलता है, सारे छोटे छोटे बाहर खड़े होते हैं, अपने छोटे छोटे झंडे लहराते हैं और राजा के लिए चिल्लाते हैं, और वहाँ बैंड बज रहे थे, परमेश्वर राजा को बचाता है जब वो सड़क पर से निकलता है। और यदि आप ले सकें तो आप एक दृश्य ले सकते हैं कि पुनरुत्थान पर वहाँ क्या होने जा रहा है। और जब उनको निर्देश दिया गया था, उन छोटे छोटों को विद्यालय में जल्दी वापस, जितनी जल्दी हो सके वापस जाना था। परेड समाप्त हो गई थी, छोटे छोटे वापस जा रहे थे। एक विद्यालय की छोटी छोटी लड़की खो गई। वे सब जगह गए कि छोटी लड़की को ढूंढें, सड़क पर इधर उधर, और अंत में टेलीफोन के खंभे के पीछे वो छोटा बालक खड़ा था। नन्ही सी रो रही थी, अपने हृदय से रो रही थी। ठीक है, शिक्षिका ने उसे उठाया और क्या बात है, क्या तुमने राजा को नहीं देखा? उसने कहा, हाँ मैंने राजा को देखा। कहा, क्या तुमने अपना झंडा नहीं हिलाया? उसने कहा, हाँ मैंने अपना झंडा हिलाया। उसने कहा, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? वो बोली, टीचर आप देखिए, मैं इतनी छोटी हूँ, दूसरे मेरे सामने खड़े हैं, वे बड़े थे, और मैंने अपना झंडा हिलाया, परंतु उसने नहीं देखा, और वो इस बात से विचलित थी। वो राजा जॉर्ज हो सकता है कि उस छोटे कद के बालक को नहीं देखा, वो उसके देशभक्त हृदय को नहीं देख सका, और वो उसके प्रति कैसा अनुभव कर रही थी। वो बहुत छोटी थी, परंतु हमारे राजा के साथ ऐसा नहीं है। वो छोटा सा भी कार्य हम करते हैं, वो उसे देखता है, और वो हमारे हृदय के विचारों को जानता है, हम जो भी करते हैं कितना ही छोटा हो। और हम उसकी सेवा कैसे करते हैं? जैसे कि हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता तो उससे कैसे प्रेम कर सकता हूँ? समझे, तुमने मेरे इन छोटों से छोटों के साथ जो भी किया, तुमने मेरे साथ किया। समझे, ये छोटी बात है कि कभी कभी हम अधूरा छोड़ते हैं, कभी कभी ये सारी जंजीर को तोड़ देता है, आपने देखा, और हम स्वतंत्र चलते हैं, बस नामधारी विचारों से, और इन छोटी बातों को भूल जाते हैं जो कि वास्तव में आवश्यक बातें हैं। हर चीज, हर वचन परमेश्वर का आवश्यक है, इसमें से कुछ भी नहीं जो छोड़ सकते हैं। हमें इसका प्रत्येक वचन लेना है वैसे ही जैसे लिखा है। यीशु ने लुदिकिया काल में कहा, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। क्या आपने ध्यान दिया कि एक ही कलीसिया युग जिसमें उसे कलीसिया से बाहर किया हुआ है, दूसरे कलीसियाई युग वो कलीसिया के भीतर है। मेथोडिस्ट और लूथरनों और आदि आदि, वो कलीसिया के अंदर था, परंतु यहाँ वो बाहर है। हमारे मत्सारों और चीजों ने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया, परंतु वो वहाँ बाहर खड़ा है, अब भी खटखटा रहा है। वो जो सुनकर खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, और उसकी आंखों के लिए चंगाई दूंगा और वस्त्र और स्वर्ग का धन। वो जो मेरी खटखटाहट को सुनेगा। मैंने सोचा मैं उस चित्रकार का नाम स्मरण कर सकता हूँ जिसने वो चित्र बनाया, चित्र रंगा बल्कि दरवाजे पर। जब वो, आप जानते हैं, सारे महान चित्र उन्हें पंक्ति में चलना चाहिए या आलोचना के क्षेत्र से, इसके पहले कि उसे हॉल ऑफ फेम में टांगा जाए, वो मूल चित्रकारी अब लाखों डॉलर की होगी। परंतु देखिए, ये एक कलीसिया के समान है जिसे आलोचना के भवन से होकर निकलना है। हम उसमें से निकलते हैं। आप पवित्र शोर करने वाले कहलाते हैं, आपको बहुत कुछ कहा जाएगा, परंतु यदि आप अपनी स्थिति मसीह में थामे रहेंगे तो किसी दिन वो हमें हॉल ऑफ फेम यानी लोकप्रियता के क्षेत्र में ले जाएगा। परंतु पहले हमें आलोचनाओं में स्थिर रहना है, यही हमारा छोटापन है जो स्थिर है, यही वो दर्शाता है। वो जो ताड़नाओं में स्थिर नहीं रह सकता, वे विचार की संतान है, और परमेश्वर की संतान नहीं, कोई मतलब नहीं वो कितनी कलीसिया का सदस्य है, उसने जो भी किया वो अब भी यदि वो ताड़ना में स्थिर नहीं रह सकता वो अवैध है, वो परमेश्वर का वास्तविक बालक नहीं है। परंतु परमेश्वर का वास्तविक बालक चिंता नहीं करता कि संसार क्या कहता है, हर चीज दूसरे स्थान पर है, उसके विचार मसीह पर रहते हैं और ये तय हो गया। जी हाँ, जो भी मसीह कहता है करो वो इसे करेगा, जहाँ भी मेमना जाता है वे उसके साथ हैं, जहाँ भी। और फिर आप उसके प्रकट होने उसकी उपस्थिति को देखते हैं, वो क्या करता है, वो सदा अपने लोगों के साथ होता है, उसकी दुल्हन वो उसकी रक्षा कर रहा है, किसी दिन विवाह का बोझ होने वाला है। और ये कलाकार जो भी है, जब ये आलोचनाओं से निकला, आलोचकों का झुंड इस कलाकार के आसपास घिर गया, मैं उसका नाम स्मरण नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं माइकलोएंजेलो के लिए सोचने का यत्न कर रहा हूँ, परंतु वो मूर्तिकार था मूसा के स्मारक का, परंतु मैं उसका नाम याद नहीं कर सक रहा हूँ। परंतु जो भी है उसने कहा आपका चित्र विशिष्ट है, कहा मेरे पास कुछ नहीं कि मैं चित्र के विरोध में कहूँ। उसने कहा क्योंकि वो अपने हाथ में लालटेन पकड़े हुए है, ये दर्शाता है कि वो रात के अंधेरे में आता है। उसने कहा और फिर वो दरवाजे पर है उसका सिर, ताकि वो निश्चय ही वो धीमी पुकार को भी नहीं चूकेगा। उसने अपना कान द्वार पे लगाया और वो द्वार पर खटखटा रहा है। उसने कहा परंतु आप जानते हैं श्रीमान कि एक चीज है जो आप अपने चित्र में दर्शाना भूल गए, और चित्रकार ने उसे रंगने में अपना जीवन लगाया था। उसने कहा वो क्या है जो मैं भूल गया श्रीमान। उसने कहा कोई मतलब नहीं वो कितना खटखटाए, देखिए आप इस पर कुंडी लगाना भूल गए, दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं है, यदि आप दरवाजे पर ध्यान दें तो उस पर कुंडी नहीं है। ओ, कलाकार ने कहा मैंने इस प्रकार से ही रंगा है, आप देखिए श्रीमान। उसने कहा कुंडी भीतर की ओर है, आप ही हैं जो दरवाजा खोलेंगे, आप दरवाजा खोलें। ओ मनुष्य, मनुष्य के द्वार पर क्यों खटखटाता है, वो भीतर आना चाह रहा है, वो भीतर आने का यत्न कर रहा है, संभवतः उसके पास कुछ है जो आपको बताना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है, उसके पास आपके लिए संदेश है। यही कारण है लोग एक दूसरे के द्वार को खटखटाते हैं, ऐसा करने को उनके पास कारण है। ऐसे बिना कारण नहीं हो सकता, आप किसी व्यक्ति के द्वार पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कोई कारण ना हो। यदि कुछ नहीं कि मुलाकात करें, उसके पास संदेश ले जाएं, या कुछ कोई कारण है कि कोई व्यक्ति जाकर दूसरे मनुष्य के द्वार पर खटखटाए, जहां भी प्रश्न है तो वहां उत्तर होना ही है, बिना उत्तर के कोई प्रश्न नहीं होता। इसलिए यही है हम बाइबल में देखते हैं, आज के ये प्रश्न बाइबल के पास इसका उत्तर है और मसीह वो उत्तर है। अब बहुत से विशिष्ट लोगों ने दरवाजे खटखटाए पीछे जीवन के समयों में, और बहुतों ने बीते समय में, और संभवतः समय है और बहुत से होंगे विशिष्ट लोग। अब पहली बात, संभवतः यदि कोई आपके द्वार पर खटखटाए, यदि आप कर सकते हैं, आप घूमकर जाकर पर्दा पीछे खींचते हैं, देखते हैं कि वहाँ कौन है। यदि आप व्यस्त हैं, जैसे कि हम दावा करते हैं आज हम व्यस्त हैं कि आराधना ले जाएं, ये करने के लिए बहुत व्यस्त हैं, और आप जानते हैं कि मेरी कलीसिया इस पर विश्वास नहीं करती इस प्रकार की चीज में, और देखते हैं कभी कभी हम वचन के खिलाने पिलाने के प्रबंधों से हटकर होते हैं, परंतु आप पर्दा पीछे खींचकर तब आप देखना चाहते हैं कि वहाँ कौन खड़ा है। यदि ये विशिष्ट मनुष्य है तो आप तुरंत दरवाजे की ओर भागते हैं। अब वापस चलें थोड़ा सा और कुछ लोगों को लें जिन्हें खटखटाया गया। आइए वापस चलें और मिस्र के फिरौन के विषय में सोचें। सैकड़ों वर्षों पहले क्या हो यदि मिस्र का राजा फिरौन किसान के घर आया, और ये किसान एक प्रकार से फिरौन से सहमत नहीं था, और उसने उसकी नीतियों को विश्वास नहीं किया, और वो उससे सहमत नहीं हुआ, और परंतु यहाँ फिरौन खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है एक राजा या गारा बनाने वाला, जैसे कि हम उन्हें मिस्र में कहते हैं, और उसने अपना पर्दा पीछे खींचा और वहाँ शक्तिशाली फिरौन दरवाजे पर खड़ा है और वो खटखटा रहा है, उसके मुख पर मुस्कुराहट है। वो किसान द्वार खोलेगा और कहता है महान फिरौन अंदर आओ, संभव है आपका नम्र दास आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाए, यदि मेरी चार दीवारी के अंदर कुछ है, फिरौन मैं आपका गुलाम हूँ, आपने मेरे भाइयों से मुझे अधिक सम्मान दिया, आप मेरे घर आए हैं और मैं निर्धन मनुष्य हूँ, आप तो केवल राजाओं से, महान व्यक्तियों से और विशिष्ट लोगों से मिलते हैं, और मैं साधारण हूँ। परंतु आप मुझसे मिलने आए हैं, आपने मेरा सम्मान किया है फिरौन, आपका ये नम्र दास क्या कर सकता है? कोई मतलब नहीं कि फिरौन क्या मांगेगा, यहाँ तक कि उसका जीवन वो देगा, निश्चय ही ये एक सम्मान है। यह थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि वो पूर्व एडोल्फ हिटलर जब वो जर्मनी का फ्यूरर था, क्या हो यदि वो सिपाही के घर जाए और वे छोटे नाजी सिपाहियों का झुंड जो घिरे हुए थे, और पहली बात आप जानते हैं क्यों, किसी ने दरवाजे पे खटखटाया और उस छोटे सिपाही ने कहा, ओ मुझे इस प्रातः अच्छा नहीं लग रहा है, पत्नी उन्हें बता दो कि चले जाएं, और वो दरवाजे की ओर भागी और पर्दे को पीछे खींचा। उसने कहा, पति पति जल्दी उठो, क्या बात है, वहाँ कौन खड़ा है? हिटलर, जर्मन का फ्यूरर। ओ, और वो सिपाही कूदा और जल्द अपने कपड़े पहने और सावधान खड़ा हो गया, दरवाजे तक गया, द्वार का ताला खोला और दरवाजा खोला और कहा, हिटलर की जय हो। देखिए, वो महान पुरुष था उसके दिन जर्मन में। वो क्या है जो मैं कर सकता हूँ? यदि उसने कहा होता, जाओ वहाँ खड़ी चट्टान से कूद जाओ, वे इसे कर देता। क्यों? और कुछ नहीं, वहाँ कोई भी महान विशिष्ट व्यक्ति जर्मनी में नहीं था उन नाजियों के दिनों में, एडोल्फ हिटलर को छोड़कर वो महान पुरुष था। और वो, और क्या ही सम्मान जब वो जनरलों से और महान पुरुषों से मिला करता, परंतु वो यहाँ एक छोटे पैदल के द्वार पर, ओ ये निश्चय ही उसके लिए सम्मान की बात होती। ठीक है, अब उस फ्लैग स्टाफ का क्या है? हम इसे घर के पास लाएंगे, क्या हो यदि आज दोपहर बाद हमारा राष्ट्रपति श्री जॉनसन, एलबी जॉनसन, क्या हो यदि वो हवाई जहाज से उतरकर यही कहीं हो? अब हम लगभग एक ही दर्जे के लोग हैं, हम सब निर्धन, और संभव है किसी की थोड़ी अच्छी नौकरी हो, संभव है थोड़ा अच्छा घर हो, परंतु कुल मिलाकर हम लोग मनुष्य मात्र हैं। परंतु क्या हो यदि वो यहाँ आपके घर पर आ जाए, संभव है हम में सबसे नम्र, और दरवाजे पर खटखटाए और आप दरवाजे पे गए और वहाँ राष्ट्रपति एलबी जॉनसन खड़े हों? क्यों, ये एक महान सम्मान होगा। आप उससे राजनीति में असहमत हो सकते हैं, परंतु आप एक सम्मानित व्यक्ति होंगे कि संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति आपके द्वार पर आया है। आप कौन हैं या मैं कौन हूँ? और वहाँ लिंडसन जॉनसन आपके दरवाजे पर, यद्यपि आप सोशलिस्ट या रिपब्लिकन हो सकते हैं या उससे करोड़ों मील भिन्नता रखते हो, परंतु फिर भी ये एक सम्मान होगा। और आप जानते हैं क्या, क्योंकि आपको ये सम्मान प्रदान किया गया था। क्यों, टेलीविजन इसे आज रात्रि दिखाएगा, निश्चय ही दोपहर का अखबार कल का विशेष समाचार यहाँ फ्लैग स्टाफ के अखबार में कि जॉनसन डो संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कल फ्लैग स्टाफ पहुँचे, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, और आपका दरवाजा खटखटाया। नम्र, उस राष्ट्रपति को नम्र कहकर पुकारा जाएगा उतना ही जितना वो है कि मेरे या आपके द्वार पर आए, हम कुछ नहीं है कि आकर हमसे बातें करी। क्यों, आप नीचे सड़क पर जाकर और कहते हैं, जी हाँ मैं ही वो हूँ जिसको राष्ट्रपति मिलने आया, चुप खड़े रहें, मैं आपका आपकी रूप रेखा लूं, सीधे मेरी ओर देखें, अब आप कैसे दिखते हैं जब आप चलते हैं, आप एक विशिष्ट व्यक्ति होंगे, निश्चय ही। क्या हो यदि इंग्लैंड की रानी आए, यद्यपि आप उसके राज्य में नहीं हैं, परंतु आप में से कुछ महिलाओं के लिए इंग्लैंड की रानी का स्वागत करना सम्मान की बात होगी। यद्यपि आप उसके राज्य के नहीं, परंतु फिर भी वो महान व्यक्ति है, वो इस समय संसार की महान रानी है, निश्चय ही वो है, राजनीतिक हिसाब से बोल रहा हूँ। क्या हो यदि इंग्लैंड की रानी आए, यद्यपि आप उसके राज्य में नहीं हैं, परंतु आप में से कुछ महिलाएं इंग्लैंड की रानी का स्वागत करना सम्मान की बात होगी, और राष्ट्रपति के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा, और हर कोई इंग्लैंड की रानी की नम्रता के विषय में बात करेगा, किसी विशेष ना बराबर महिला को देखने फ्लैग स्टाफ में लोगों हवाई यात्रा से पहुंचेंगे और अखबार इसे छापेगा और इसका समाचार सुनाया जाएगा। परंतु आप जानते हैं, सारे समय विशिष्ट व्यक्ति यीशु मसीह हमारे द्वार पर खटखटाता है, और वो सारे राजाओं से अधिक वापस किया गया जो कभी थे, ये ठीक बात है, और आप उसे स्वीकार कर सकते हैं और बाहर निकालकर इस विषय में कुछ कह सकते हैं, बाहर का संसार आपके मुंह पे हंसेगा, कोई समाचार नहीं। यीशु मसीह से बड़ा और कौन आपके घर आ सकता है, कौन आपके द्वार को खटखटा सकता है जो यीशु मसीह से बड़ा है? कौन ये कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र जो आपके द्वार पे खटखटा सकता है, कौन और अधिक विशिष्ट होगा? और फिर भी एक दिन के बाद दूसरे दिन वो खटखटाता है, और यदि आप उसे स्वीकार भी कर लें तो आप धर्मांध कहलाते हैं। इसलिए देखिए कैसे संसार अपनों को जानता है, ये ठीक बात है, परंतु अब तक वो तब तक नहीं आएगा जब तक आने का कारण ना हो। क्या आप सोचते हैं राष्ट्रपति जॉनसन की नम्रता या इंग्लैंड की रानी या कोई महान व्यक्ति, ये कैसे दर्शाया जाएगा उस महान विशिष्ट व्यक्ति की नम्रता कि आपके द्वार पे खटखटाए? परमेश्वर के पुत्र की नम्रता के विषय में क्या है? हम कौन हैं? केवल पापी, गंदे पापों में जन्मे, अपराधों में बड़े हुए, संसार में झूठ बोलते हुए आए, और परमेश्वर का पुत्र आपके द्वार पर आके खटखटाए। अब इंग्लैंड की रानी आपसे मांग सकती है, वो आपसे कुछ ले सकती है। ऐसी राष्ट्रपति वो आपसे करने को कह सकता है जो आप नहीं करना चाहते, वो आपसे वो धरोहर मांग सकता है जो आप देना नहीं चाहते, और उसके लिए इसका कोई अर्थ ना होगा। परंतु यीशु आपके लिए कुछ ला रहा है, वो खटखटाता है, वो क्षमा ला रहा है। इसे अस्वीकार ना करें, क्योंकि जैसे हमारी कचहरियों में मुकदमे चले उसी प्रकार स्वर्ग के राज्य में होगा। यदि उसने खटखटाया और क्षमा लाया और आपने अस्वीकार कर दिया और अपने पापों में मर गए, आप नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आपके पास इस प्रकार की सभा में बैठने का सम्मान था, यद्यपि आपको बेदारी में होने का सम्मान मिला, या आपकी कलीसिया और अपने पास्टर को सुसमाचार प्रचार करते सुना, और आपके पास भक्त मंडली थी, कहते हैं हाँ मैं वहाँ था, संभव है आपको बताना कठिन पड़े वो सब जो आप कह सकते हैं, मैंने गाने सुने, मैंने इसका आनंद लिया, मैंने गवाहियाँ सुनी, वो वास्तविक थी, परंतु आपने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या हो यदि मैं युवा पुरुष होता और एक युवती मिलती, वो सुंदर थी, वो मसीही थी, वो बहुत ही शिक्षित, आप इसमें दोष नहीं पाते, परंतु आपको मनुष्य के रीति रिवाज रखने पड़ेंगे। आप कहते हैं ओ मैं विश्वास करता हूँ ये सही है, मैं देखता हूँ परमेश्वर ने ये कहा, परंतु आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वो स्त्री मेरा भाग हो गई, फिर आप वचन का भाग हो गए जो कि दुल्हन है। यदि वो वचन है तो दुल्हन है, दुल्हन वचन होगी, निश्चय ही होगी। देखिए आपको स्वीकार करना होगा, आप करेंगे, आप जो चाहें कह सकते हैं, आप राष्ट्रपति के विषय में घमंड कर सकते हैं, परंतु अक्सर जब यीशु की बारी आती है हमारे द्वार पे, हम बस उसे अस्वीकार कर देते हैं। देखिए हम उसके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते, हम कहते हैं अच्छा किसी और दिन। क्या हो यदि आपने किसी का द्वार खटखटाया? आइए हम दृश्य को एक मिनट के लिए घुमा दें। क्या हो यदि आप जाएं और किसी के द्वार पर खटखटाएं और आपके पास उनके लिए कुछ हो? इस सब के बाद वे आपके लिए ऐसे हों जैसे आप उनके लिए परमेश्वर जैसे। ठीक है यदि आप करते हैं, क्यों? ठीक है, परंतु आप किसी बंधन में नहीं हैं। इसलिए जब आपने किसी के द्वार पर खटखटाया और उन्होंने खिड़की में से झांका और पर्दा बंद कर लिया, या दरवाजे पर आकर कहते हैं किसी और समय, ठीक है मैं पसंद करूंगा, इस प्रातः मेरे पास समय नहीं है, आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे, संभवतः मैं भी वही करूंगा और बाकी भी, आप फिर वापस नहीं जाएंगे, परंतु यीशु नहीं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, निरंतर खटखटा रहा है, समझे? वो जो ढूंढता है, ढूंढता नहीं, ढूंढता, वो जो खटखटाता है, खटखटाना, खटखटाना, निरंतर खटखटाना, वो जो ढूंढता, वो जो खटखटाता है, वो इतना नहीं, अन्यायी न्यायी का दृष्टांत, स्त्री गई और बदला चाहा, परंतु वो ना पा सकी, वो उसने निरंतर खटखटाया और विनती की, और उसने कहा कि इससे पीछा छुटाने के लिए मैं इसके शत्रु का बदला चुकाऊंगा, तो स्वर्ग पिता कितना और करेगा। देखिए ये तो हमें उसके द्वार पर खटखटाना चाहिए, ये तो आदम को चाहिए कि वो वाटिका में इधर उधर भागे, चिल्लाए पिता पिता आप कहाँ पर हैं, परंतु बदले इसके ये परमेश्वर वाटिका में इधर उधर भाग रहा था, पुत्र पुत्र तू कहाँ है। देखिए दर्शाता है कि हम क्या हैं, हम सदा से छिप रहे हैं बजाय कि बाहर निकलें और इसे स्वीकार करें, हम भागना चाहते हैं, किसी चीज के पीछे छिपना चाहते हैं। देखिए ये मनुष्य का स्वभाव है, हमने यही मार्ग लिया। जी हाँ श्रीमान, आप इन लोगों को जो आपके पास सबसे अच्छा है देते हैं, परंतु आप नहीं करेंगे, आप यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा मतलब आपसे नहीं, मेरा मतलब लोग यहाँ, या आप ये भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं प्रचारक मैंने अभी ये किया है, मैंने अभी हाल में अपना हृदय खोला है और यीशु को भीतर आने दूं, और मैंने ये 10 वर्षों पहले किया, मैंने ये 20 वर्षों पहले किया, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, परंतु क्या आपने यही सब किया? समझे, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप किसी को अपने घर में निमंत्रण देते हैं और फिर जब आप दरवाजे के भीतर जाते हैं, बल्कि कोई आपको निमंत्रण देता है, बल्कि कहता है भीतर आए, हाँ मेरा एक उद्देश्य है, मैं नगर से बाहर जाऊंगा और सम्मान पाऊंगा। आप देखिए, इसी प्रकार से बहुत से लोग मसीह को स्वीकार करते हैं, मैं उस कलीसिया से संबंध रखता हूँ, मैं अमुक अमुक उस महान स्थान से संबंध रखता हूँ जहाँ से अमुक अमुक डॉक्टर PHLL है, आप जानते हैं, और ये सबसे बड़ा आराधनालय है, मेयर वहाँ जाता है और सब कुछ आप जानते हैं, मैं उस कलीसिया से संबंधित हूँ और वे इसे इतना ही भीतर आने देते हैं। जी हाँ, मैं उसे स्वीकार करूंगा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। परंतु तब क्या जब यीशु हृदय में आता है? बहुत से लोग उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि वे नरक में नहीं जाना चाहते, परंतु जब यीशु आपके हृदय में आता है तो वो स्वामी होना चाहता है, केवल बचाने वाला ही नहीं परंतु स्वामी भी, स्वामी प्रभुता करने वाला, वो भीतर अधिकार लेने आता है। आप कहते हैं क्या ये ठीक बात है भाई ब्रैनम? निश्चय ही। क्या हो यदि मैं आपको अपने घर में निमंत्रण दूं और आप दरवाजे पर आए और आप दरवाजे पर खटखटाएं और मैंने बाहर देखा, मैंने कहा हाँ अंदर आ जाओ, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हैं आप ऐसा करते हैं, परंतु अब जब आप अंदर आते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में इधर उधर घूमें, आप वहीं दरवाजे पर रहें। स्मरण रखें, हमारा पाठ दरवाजे के भीतर दरवाजे हैं और मनुष्य के हृदय के भीतर बहुत से छोटे छोटे दरवाजे हैं और वे छोटे छोटे दरवाजे बहुत सी चीजों को ढांपे हुए हैं। बस उसे भीतर आने दें, बस इतना ही पर्याप्त नहीं? जब वो भीतर आता है, जब मैं आपके घर में आता हूँ, यदि आप दरवाजे पर मेरा स्वागत करते हैं, क्यों? यदि आप कहें भाई ब्रैनम अंदर आइए, आपको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कहूँगा भाई मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके घर में आया। ओ क्या आप यहाँ आएंगे और बैठेंगे? भाई ब्रैनम हमारे सारे घर में घूमो और स्वयं को घर में अनुभव करो। ओ प्रभु, मैं वहाँ रेफ्रिजरेटर के पास जाऊँगा और बड़ा सा सैंडविच लूंगा लगभग इतना, अपने जूते उतार कर और जाकर शयन कक्ष में लेट जाऊंगा और वास्तव में मेरे खाने का पर्व होगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्वागत का अनुभव किया, आपने मेरा स्वागत किया, इसलिए मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप मेरा स्वागत करेंगे। परंतु यदि मैं आपके घर में जाऊं और आप मुझसे कहें कि आप वहां द्वार पे खड़े रहिए, आप इधर उधर ना घूमिए, मैं स्वागत का अनुभव नहीं करूंगा, क्या आप करेंगे? नहीं, देखिए आप स्वागत का अनुभव नहीं करेंगे। किसी ने आपको निमंत्रण दिया और कहा आप प्रतीक्षा करें, जी हाँ भीतर आइए, परंतु ठीक यहाँ खड़े रहें। जब आप मानव हृदय में जाते हैं तो वहाँ छोटा द्वार है, हम उनमें से कुछ पर बोलेंगे, हमारे पास उन सब दरवाजों के लिए समय नहीं है क्योंकि वे बहुत से हैं, परंतु कहें कि अगले 10 मिनट के लिए हम 3 दरवाजों पर बोलेंगे। और मनुष्य के हृदय के दाहिनी ओर जब आप दरवाजे में जाते हैं तो दाहिनी ओर एक छोटा दरवाजा होता है जो कि घमंड का दरवाजा कहलाता है। ओ आप उस दरवाजे के भीतर ना जाएं, वे प्रभु को वहाँ नहीं चाहते उस दरवाजे पर, ये घमंड है। मैं कुलीन हूँ, मैं चिंता करता हूँ, ओ हाँ, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं, ये घमंड है, आप वहाँ हस्तक्षेप न करें। अब जब तक आप उस घमंड के दरवाजे को बंद रखते हैं वो स्वागत का अनुभव नहीं करता, वो आपको नीचा दिखाएगा, देखिए इसलिए वो भीतर आता है। मुझे बताने का आपका अर्थ है कि मुझे वहाँ जाना है और बाकियों के समान व्यवहार करना है, भाई आपको नहीं करना है, ये बात निश्चित है। भाई मैं आपको बताऊं, आप क्या सोचते हैं जब मैं अगली बार व्यापारिक सभा में आऊंगा, या मैं क्या करूंगा जब कल मैं अपने मालिक से मिलूंगा और वो उस आत्मा को मुझे अपने ऊपर लेना होगा और मैं वहाँ कहूँगा अपने कार्य के बीच में और अन्य भाषा बोलता जाऊंगा, ओ ये मुझे नीचा दिखाएगा, नहीं वहाँ से अलग रहो। देखिए आप यही हैं, हाँ आप यीशु को अंदर आने देंगे, आप कलीसिया के सदस्य हो जाएंगे और उसमें अपना नाम लिखवाएंगे, यीशु को अपना बचाने वाला स्वीकार करते हैं, परंतु वो आपका स्वामी है। इस विषय में क्या है? जब उसे पूर्ण नियंत्रण मिला, जब वो स्वामी है, उसे सब मिला, उससे संबंधित है, देखिए आपने पूरी रीति से उसको समर्पण कर दिया। अब परंतु वो छोटा सा घमंड, ओ आपका अर्थ है हम महिलाओं के लिए हम अपने बाल बढ़ने देने जा रही हैं? ठीक है, यही उसने कहा है, हम नख प्रसादन छोड़ने जा रहे हैं या श्रृंगार की चीजें, उसने यही कहा है। ठीक है, आप सिलाई संगठन के विषय में क्या सोचते हैं? वे मुझे पुरानी रीति का कहेंगे, ठीक है, अपने घमंड में बने रहें, आगे बढ़िए, वो द्वार पर खड़ा है, यही है जो आगे उसे मिल सकता है। परंतु जब आप द्वार खोलने के लिए तैयार हैं, तो उसे भीतर आने दें। वो इसे आपके लिए साफ करेगा। छोटे छोटे कपड़े कूड़े के डिब्बे में चले जाएंगे, श्रृंगार कूड़े के दान में वापस चला जाएगा। नाई भूखा मरेगा यदि वो केवल महिलाओं के बाल काटता है, एक वास्तविक विश्वासी के। अब आप कहते हैं ये नहीं होता। ओ हाँ, ये भी होता है। यही जो बाइबिल ने कहा, ये ठीक बात है। देखिए, यहाँ छोटा सा वचन है कि आप उसे वहाँ नहीं चाहते। अच्छा, मेरा पास्टर, मैं चिंता नहीं करता कि ये पास्टर ने क्या कहा। यही है जो बाइबिल ने कहा है। ऐसा करना महिलाओं के लिए लज्जा की बात है। अच्छा, आप कहते हैं भाई बनम, हमें तो ये सिखाना चाहिए कि पवित्र आत्मा कैसे पाएं, ये वो कैसे करें। यदि आप कह गए नहीं जानते हैं, तो बीजगणित कैसे सीखेंगे? ये भी नहीं जानते कि व्यवहार कैसे करें। एक के समान दिखते हैं, एक से वस्त्र। आज सड़क पर ऐसी महिलाओं को देखना कितनी लज्जा की बात है। बीते कल मैं एक स्थान पर गया था, कब, और कोई दूषित झुंड भीतर आया। वे पुरुषों के बाल उनकी आंखों पर थे, आए और उनकी पीठ पर लटके हुए थे, और जैसे कि आधुनिक जूते, जैसे कि छोटे बालक विद्यालय के लिए पहनते हैं, बड़े पुराने जूते जिनके आधे मुंह खुले हुए हों, और बता सकते हैं कि वे अपराधी थे और इस प्रकार से भीतर आए। कहते हैं हम फ्रांस के हैं। संसार में कौन इस प्रकार के मनुष्य को अपने व्यापार में कार्य के लिए लेगा? वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? मैंने वास्तविक कुछ लड़कों को वहाँ पर बैठे देखा। वे विश्वविद्यालय से आए थे। ये बीटनेस, या मैं विश्वास करता हूँ वे अपने आप को बक्स या बीटल्स या इस तरह का कुछ वहाँ, ये चीज कुछ इंग्लैंड से आई है। और फिर इसमें इस प्रकार से कौन ऐसे मनुष्य को अपने काम पर लेगा? क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार में ले लेंगे? आप व्यापार करने वाले, यदि आप लेते हैं तो आप कुछ हैं, तो आप अब भी क्रूस के बहुत समीप नहीं। बाहर सड़क पर इन स्त्रियों को देखिए, और ये कलंक है, संभव है अज्ञानता में। ये स्त्रियां इन छोटे कपड़ों में, देखिए, ये तो कलंक है जिस प्रकार से ये दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, आप कहते हैं क्यों स्त्री, आप व्यभिचार कर रही हैं? वे कहते हैं रुकिए एक मिनट नवयुवक, मैं वैसी ही सदाचारी हूँ जैसे कि मैं। ये हो सकता है कि ये आपके अपने विचारों में हो, और ये हो सकता है कि चिकित्सा के परीक्षण से सिद्ध हुआ है कि आप हो सकते हैं। परंतु न्याय के दिन स्मरण रखिए कि आपको व्यभिचार करने के लिए उत्तर देना होगा। यीशु ने कहा जो भी स्त्री पर को कामुकता से देखता है अपने हृदय में उससे व्यभिचार कर चुका, और आपने स्वयं को उसको दिया। देखिए कैसे शैतान ने उन्हें अंधा किया है। ये कलंक है, लज्जा की बात। आप देखिए उन पर एक आत्मा है, ये आत्मा है जो ये करती है। ये अपवित्र आत्मा है, परंतु वास्तविक पवित्र आत्मा से महिला सुशील वस्त्र पहनेगी और पवित्र दिखती है। एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, हम नीचे सड़क पर जा रहे हैं, हमने एक महिला को अपने गांव के वेशभूषा पहने हुए पाया। ये विचित्र बात थी, देखिए वहाँ पर बहुत से पेंटेकोस्टल नहीं है, तो हमने पाया कि वो वस्त्र पहने हुए थी। और इसने कहा, बिली कहा, मैं उनमें से कुछ महिलाओं को जानती हूँ, वे वहाँ उन आराधनालयों में समूह गान गाती हैं। मैंने कहा निश्चय ही। कहा और वे मसीह होने का दावा करती हैं। मैंने कहा प्रिय देखो हम नहीं हैं। कहा क्यों हमारे लोग? मैंने कहा देखो प्रिय, हम उन लोगों में से नहीं हैं, उनकी जाति में से। उसने कहा क्या? कहा वे लोग अमेरिकन हैं। मैंने कहा हाँ, पर हम नहीं हैं। उसने कहा हम नहीं हैं? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जब मैं जर्मनी जाता हूँ तो मैं जर्मन की आत्मा पाता हूँ। जब मैं फिनलैंड को गया, वहाँ सोना, आप में से बहुत से फिनलैंड निवासी जानते हैं, महिलाएं पुरुषों को स्नान कराती हैं। इसलिए ये बस फिनी की आत्मा है, जबरदस्त लोग। परंतु आप पाते हैं जहाँ कहीं आप जाते हैं, आप एक राष्ट्रीय आत्मा पाते हैं। आप एक कलीसिया में जाते हैं और पास्टर को देखते हैं, यदि वो वास्तव में निरंकुश है और वैसा ही बना है, तो भक्त मंडली भी वैसी ही होगी। देखा, वे बजाय पवित्र आत्मा के एक दूसरे की आत्मा को लेते हैं। यही कारण है हम में बहुत सी मिलावटी बाइबल की शिक्षाएं हैं, बजाय इसके कि वापस रूपरेखा पर आएं, उन्होंने किसी नामधारी की आत्मा ले ली है, समझे। परंतु वचन उनके लिए वैसे ही अपरिचित है जैसे जब यीशु के दिनों में, जब वो आया वास्तविक सच्चे सुसमाचार का परिचय करा रहा था। उन्होंने कहा वो शैतान है, वो बालजबूल है, समझे। परंतु ये आपको वही मिला। और उसने कहा तो फिर हम अमेरिका नहीं है, तो हम क्या हैं? मैंने कहा हमारा राज्य ऊपर है। देखिए हम स्वतंत्र हैं, नया जन्म प्राप्त, परमेश्वर का राज्य आप में है। देखिए वैसे ही व्यवहार करते हैं आप, वहाँ से प्रतिनिधि हैं। मैंने कहा हमारी यहाँ पर नागरिकता है, यहाँ पर शरीर में रह रहे हैं, हमारी आत्मा, हम यहाँ पर यात्री और परदेशी हैं। हम संसार के लिए परदेशी हैं, यहाँ तक कि अपने ही देश में, क्योंकि हमने निमंत्रण को स्वीकार किया है। जब हमारे हृदय पर खटखटाया गया कि हम उसके भाग हो जाएं, उसका वचन, और वचन हमें स्थिर करता है, हमें जीवित रखता है, और हमसे मसीह व्यवहार करवाता है। कुछ समय पहले दक्षिण में एक छोटी सी कहानी, एक राजा था या एक खरीदार वे गुलाम बेचता था। ये अलगाववाद समय की बात है और दक्षिण में उसके पास गुलाम थे, वे जाते और उन्हें खरीदते, जैसे आप कार को करते हैं ढेर में से निकालना। अब मैं एक एकीकरणवादी हूँ पूरी रीति से, मेरा अर्थ एक अलगाववादी, क्योंकि मैं चिंता नहीं करता वे कितना विवाद करते हैं। एकीकरणवादी एक मसीह नहीं हो सकता, ये ठीक बात है। परमेश्वर यहाँ तक अपने राष्ट्र को अलग करता है, वो अलग करता है उसके लोग, उनके मध्य में से बाहर निकलो, वो अलगाववादी है, यहाँ तक कि उनकी अशुद्ध वस्तुओं को भी ना छुओ। उसने इसराइलियों को अलग किया, उस यहूदी जाति को संसार की सारी जातियों से, वो अलगाववादी है। परंतु मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भी मनुष्य गुलाम बने। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने गुलाम बनाए। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई किस पर प्रभुता करे, कोई भी जाति, रंग या कोई भी चीज। परंतु अलगाव है, दुल्हन बाकी कलीसियाओं से अलग है और ये बिल्कुल ठीक बात है। स्वाभाविक कलीसिया और आत्मिक कलीसिया, शारीरिक कलीसिया, कलीसिया वचन से, ये सदा से रहा है। यीशु अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। इस प्रकार से वहाँ खरीदार होते थे, दलाल जाकर इन गुलामों को खरीदते थे। एक बार एक बड़ा बागवान आया और उन्हें देखा, गुलामों को बहुत पीटा गया था और आदि आदि। आप जानते हैं वे अपने घर से दूर थे, वे कभी भी फिर घर वापस नहीं जाएंगे। बोअर्स और इंग्लैंड वालों ने जाकर उन्हें लिया, उन्हें यहाँ ले आए और उन्हें बेचा, और वे कभी भी पिता और माँ को नहीं देखेंगे, अपने बालकों को कभी नहीं देखेंगे। उन्होंने एक दूसरे से उनकी संतानें उत्पन्न की, बड़े मनुष्य को चुना और बड़ी स्त्री के साथ संतान जन्माई, उसकी अपनी पत्नी से अलग कि बड़े बड़े गुलाम जन्माए। ओ परमेश्वर, उन्हें किसी दिन इसका उत्तर देना होगा, ये ठीक बात है। क्या ये ठीक बात नहीं? जैसे कि एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा, जब वो वहाँ न्यू ऑर्लिंस में नाव से उतरा, उसने अपने स्टोव पाइप टोपी को हटाया, उसने तीन या चार निगरों को देखा वहाँ आकर नंगे पैर खड़े हुए थे, जहाँ वे एक गाय वहाँ पड़ी हुई थी जिससे जमीन पर की ओस हट गई थी, और वे गाय के जाने के बाद उस जमीन पर खड़े थे, उनके छोटे पैर फटे हुए, लहू बह रहा था। वे गा रहे थे, तुम्हारे पास जूते हैं, मेरे पास जूते हैं, और परमेश्वर के सारे बालकों के पास जूते हैं। जब वो वहाँ नाव से उतरकर आया, पशु बाड़े के पास पहुँचा, वहाँ एक बड़ा निगरो खड़ा हुआ था, उसे चारों ओर से चाबुक से पीटा जा रहा था कि उसके हृदय को परखें, और उसे सड़क पर दौड़ाकर ऊपर नीचे दौड़ा रहा था, उसके पीछे कोड़ा लेकर फिर उसके हृदय को जांचा, देखा कि वो ठीक है। उसकी बेचारी पत्नी वहाँ खड़ी थी, उसकी बगल में दो या तीन बालक इस प्रकार के थे कि उसे बेचे और उससे बड़ी भारी स्त्री से बालकों को जन्माए। बूढ़े अब्राहम लिंकन ने अपनी टोपी बगल में अटका ली और इस प्रकार से अपनी मुट्ठी मारी, ये गलत है और किसी दिन मैं इस पर वार करूंगा यदि मुझे अपने जीवन से कीमत चुकानी पड़े। और सामने शिकागो के म्यूजियम में संग्रहालय में एक वेशभूषा जिस पर लहू है रखी है, उसने निगरों को इससे स्वतंत्र कराया। और मैं कहता हूं कि पाप और चीजें गलत हैं। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि इस पर वार करूं। और सुसमाचार के सारे सेवकगण, हम स्वतंत्र जन्मे हैं, परमेश्वर की संतान, हमारा किसी भी मतचार या विचारधारा से कोई काम नहीं कि हमें संसार में ले जाए। कलीसियाओं की सभा में हम स्वतंत्र जन्मे लोग हैं, पवित्र आत्मा में हमारे पास अधिकार है, हम इस प्रकार की चीजों से बाहर आ गए हैं कि पेंतिकॉस्टल हो जाएं, ये ठीक बात है। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमें इस प्रकार की चीजों के बंधन में फिर नहीं बंधना। परंतु इस खरीदार ने कहा, इस गुलाम को देखते हुए, सौ या उनमें से कुछ थे उस बड़े बाड़े में, उसने कहा, कहता है एक छोटा व्यक्ति वहाँ है, उन्होंने उसे कोड़े नहीं मारे, उसका सीना बाहर की ओर, उसकी ठोड़ी ऊपर, ठीक अपने कार्य पर, कहा, बोलता है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, ओ नहीं स्वामी। तो मैंने कहा, ये बिकने के लिए नहीं है? ओ, उसने कहा, अच्छा क्या ये गुलाम है? कहा हाँ। उसने कहा, अच्छा इसमें इतना क्या अंतर है? कहा, क्या तुम इसे भिन्न खाना देते हो? उसने कहा, नहीं, ये सब अपने नाव में एक साथ ही मिलकर खाते हैं। कहा, क्या ये इन सबके ऊपर है? कहा, नहीं, ये बस एक गुलाम है। अच्छा, कहा, तो फिर क्यों अलग है? कहा, आप जानते हैं मुझे अपने में आश्चर्य है। परंतु कहा, आप जानते हैं ये जहाँ से आए हैं उनके देश में अफ्रीका में, इस लड़के का पिता अपनी जाति का राजा है, और यद्यपि ये एक परदेशी है, ये स्वयं राजा के पुत्र के समान व्यवहार करता है। ओ, मैंने सोचा मसीह युवा महिला के लिए क्या ही चीज है, और युवा पुरुष के लिए इस प्रकार के कपड़ों को पहनना बंद करना, पुरुषों अश्लील चुटकुले सुनाना बंद करो, और ये सारी चीजें, हम राजा के पुत्र और पुत्रियां हैं, रानी के समान वस्त्र पहनो, एक महिला के समान वस्त्र धारण करें, सज्जन पुरुष के समान व्यवहार करें, अपने बालों को इस प्रकार से बढ़ने दो। बाइबल ने कहा ये गलत है, प्रकृति आपको सिखाती है पुरुष के लिए कि लंबे बाल रखना, और ये लज्जा और साधारण बात है, यहाँ तक कि स्त्री अपने कटे बालों के साथ प्रार्थना करे। और इस विषय में क्या है, स्त्री के लिए पुरुषों वाले कपड़े पहनना घृणित बात है। महान ना बदलने वाला परमेश्वर बदलता नहीं, परंतु फिर भी आज ये उतना ही ढीला है जैसे हमारा बाकी राष्ट्र है। लज्जा की बात है। आइए परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान व्यवहार करें। हम वैसे ही जिए। हम राजा के पुत्र हैं। हम लोग ठीक इस समय गंदगी और धूल और गंदगी आसपास, यहाँ लोग स्वयं को मसीह कहते हैं और अब भी वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। परंतु स्मरण रखें, एक दिन हमें खटखटाहट मिलेगी और अंदर आने के लिए खोलें, घमंड और सब छोड़ें। आमीन। मैं चिंता नहीं करता वो मुझे क्या कहते हैं। ओ मैं समझता हूँ मैं पुराने रीति रिवाजों का हूँ, परंतु मेरा बचाने वाला भी पुराने रिवाज का था। क्या ये ठीक बात है? आपने गाना सुना है, पुराने चलन के हो, किसी की नकल का यत्न ना करो, वो आपका आदर्श है, उसके समान होने का यत्न करो। आपके अंदर का आत्मा आपकी ये करने में सहायता करेगा, अपने जीवन को उसके समान बनाओ। हाँ, वहाँ एक द्वार है, मैं दूसरे द्वार पर पुकारना चाहता हूँ। मैं भी उत्तेजित हो गया। वहाँ एक और द्वार है, बस उससे अगला द्वार, सीधे हाथ की ओर जा रहे हैं, और वो द्वार आपके जीवन का निजी द्वार है। ओ, आप इसको उसको इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहते? अब यदि मैं शराब की दावत में जाना चाहता हूँ, आपको इससे क्या, कलीसिया मुझे क्या बताने जा रही है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? ओ, आप इसी स्थिति में हैं, देखा? मेरी मजदूरी का दसवां भाग, कौन मुझे बताने जा रहा है कि मैं क्या करूँ? ये मेरा अपना निजी जीवन है, मैं ये कमाता हूँ, ये मेरा अपना जीवन है। यदि मैं चाहूँ तो मैं छोटे कपड़े पहनूंगा, ये मेरा अपना अमेरिकन सौभाग्य है, ठीक है। परंतु यदि आप मेमने हैं और बकरी नहीं, मेमना क्या है? वही जो वो है, किसी दिन ये अलग कर दिए जाएंगे। भेड़ के पास ऊन होता है, उसके पास केवल यही होता है, और वो इस ऊन का निर्णय नहीं कर सकती। हमें आत्मा के फल बनाने को नहीं कहा, परंतु आत्मा के फल उत्पन्न करना, और जब तक वो भेड़ है वो उत्पन्न करेगी, मुझे इनका निर्माण नहीं करना। ग्रंथि आदि सब भेड़ के भीतर ही होती हैं। ये ऊन बनाएगी क्योंकि उसके अंदर ग्रंथियां हैं और एड्रिनल और आदि ये ऊन बनाती हैं। और जब आप मसीह हैं, आप वचन के साथ सामना करेंगे। मैं चिंता नहीं करता कौन क्या कहता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, खींचना, दबाना, मारना, आप मसीही हैं, आप स्वतः ही आत्मा के फल उत्पन्न करेंगे। समझे, देखिए, और ये इस प्रकार से है, समझे। परंतु आज लोग, वे आपको अपने निजी जीवन से धोखा नहीं देना चाहते। आपको केवल ये करना है कि आसपास के सारे दरवाजे खोल दें। अब हम कहें यीशु भीतर आइए, देखिए क्या होता है। जब आप पुस्तक में देखते हैं तो आपको ये करना चाहिए। आप ये करेंगे क्यों? आप आरंभ से ही भीड़ हैं। परंतु यदि आप उसे केवल द्वार ही पर बिठाना चाहते हैं, कहते हैं मैं आराधनालय का सदस्य हो गया हूँ, मैं भी उतना ही अच्छा हूँ जितने आप हैं, मैं मसीह को स्वीकार करता हूँ, हो सकता है आपने यही किया हो, परंतु क्या आपने उसे स्वामी बनाया? समझे, अब प्रभु कानून की पुस्तक से नहीं बैठ सकता और एक वचन कहते हैं और फिर पलटकर इसका इनकार करते हैं। और यदि आप कहते हैं आपके पास पवित्र आत्मा और बाइबल निश्चित बातों को करने से कहती है, और आप कहते हैं ओ मैं इसका विश्वास नहीं करता, आप बस स्मरण रखें कि जो आत्मा आप में है वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। ये ठीक बात है, वो स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। उसने वचन लिखा और वो इसका ध्यान रखता है कि इसे करे, समझे। इसलिए ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये एक आत्मा है, ठीक बात है। ये कलीसिया की आत्मा हो सकती है, ये पास्टर की आत्मा हो सकती है, ये संसार की आत्मा हो सकती है, ये हो सकती है, मैं नहीं जानता ये क्या है, परंतु ये जो भी है ये नामधारी की आत्मा हो सकती है। मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं ये वो हूँ, पेंटिकॉस्ट। अब स्मरण रखें, मैं इसे सीधा सीधा कह दूँ, पेंटिकॉस्ट कोई समिति नहीं है, पेंटिकॉस्ट एक अनुभव है जिसे आप पाते हैं। आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, सब इस पेंटिकॉस्ट का अनुभव कर सकते हैं। आप पेंटिकॉस्ट के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि इसका सदस्य बनने का कोई मार्ग नहीं है। मैं बर्नम परिवार में 55 वर्षों से हूँ। आप जानते हैं कि उन्होंने मुझसे बर्नम हो जाने के लिए कभी नहीं कहा, मैं बर्नम ही जन्मा था। और इसी प्रकार से आप मसीही हैं, आप मसीही जन्मे हैं, ये ठीक बात है। ओ वो निजी जीवन, ओ मैं आपको बताता हूँ, मेरा पास्टर इन नर्तकों में जाता है और हम भी नाचते हैं, वे ये करते हैं, ठीक है, समझे। आप मुझे ये बताने के लिए ना आए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, आप उसे भीतर नहीं आने देंगे, बस उसे एक बार अंदर आने दें और फिर नाचने को जाएं या रॉक एंड रोल को या जो भी आप करने जा रहे हो, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसे नहीं कर सकते। उसे एक बार अंदर आने दें, फिर छोटे छोटे कपड़े पहनना आरम्भ करें। आप में से कुछ महिलाएं, मैं जानता हूँ मैं आपका अधिक समय ले रहा हूँ, परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि इस संदर्भ में ये सही बात है। मैं समझता हूँ कि कभी प्रभु ने जो कभी महान सभा मुझे करने दी, उसके लिए वो मुंबई में थी, जहाँ लगभग 5 लाख लोग थे, 2 लाख और कुछ हजार अफ्रीका डर्बन में, घुड़दौड़ के मैदान में। उस दोपहर पश्चात मैंने कहा, इन सब महान अचरज की बातों को देखने के पश्चात जो कि हमारे अनुग्रहकारी प्रभु ने नीचे आकर करी, मैंने कहा, मिशनरियों ने आपको वचन पढ़ाया, परंतु वचन उत्तेजित होकर और जीवित हो गया है। जो उसने कहा वो जीवित होकर आया। और फिर जब 25,000 चंगाइयां एक बार में हुई और एक के बाद दूसरे कुर्सियां लादी गईं, बस एक छोटी सादी प्रार्थना, उन्होंने पवित्र आत्मा को देखा। वे लोग जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि वे कौन थे और वे कहां से आए, वे यही सब देखना चाहते थे, समझे। और मैंने पूछा, कितने मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं? वहां 30,000 अपने पैरों पर खड़े हो गए, कम्बल वाले वासी मूर्तियों के साथ, डॉक्टर बॉसवर्थ, डॉक्टर बैक्स्टर, और वो रोने लगे। और भाई बॉसवर्थ भागे, कहा, भाई बर्नम, ये आपकी ताजपोशी का दिन है। भाई बैक्स्टर ने कहा, भाई बर्नम, मैं आश्चर्य करता हूँ, मैं सोचता हूँ इनका अर्थ शारीरिक चंगाई से है। ये लड़का अपने हाथों और घुटनों पर था और पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि वो कहाँ से आया और क्या हुआ था। कहा, तुम करोगे, अपने भाई के विषय में सोचो। वो यहाँ से लगभग आधा मील पीछे वहाँ है, वो पीली बकरी पर सवारी कर रहा था और उसने अपने पैरों पर चोट मार ली। मैंने कहा, परंतु यहोवा यूं कहता है, वो चंगा हो गया। यहाँ वो लड़का बैसाखियां अपने हाथों में लेकर आया इस प्रकार से, और पुलिस वालों को उन्हें शांत करने में लगभग 20 मिनट लगे। तब ये लड़का अपने हाथ और घुटनों पर इस प्रकार से था, उठ भी नहीं सकता था, नंगा था। ओ प्रभु, ऐसी भयानक चीजें। उसने सोचा वो वहाँ किसी पर्यटक के पास आ रहा था। आप जानते हैं वे एक प्रकार का जंगली नाच करते हैं, और जंजीर को लेकर इसे हिलाया। मैंने कहा, यदि मैं इस बेचारी की सहायता कर सकूं और इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाता तो मैं यहाँ खड़े होने के योग्य नहीं होऊंगा। परंतु मैंने कहा, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु अब मेरे पास छोटा सा वरदान है, मैं उसे गेर में डाल सकता हूँ, प्रभु जो भी कहता है। और जब प्रभु ने दर्शाया, उसे बताया वो कौन था, कहा उसके माता पिता वहाँ बैठे थे, वो लोग जुलू थे, और कहा वे बहुत ही दुबले थे। ये विचित्र है, जुलू आमतौर पर 300 पाउंड के पुरुष होते हैं। इसलिए फिर कहा, वे लोग असाधारण हैं, परंतु ये लड़का मसीह परिवार में जन्मा, क्योंकि उसके सीधे हाथ की ओर, जैसे कि आप द्वार में भीतर जाते हैं, वहाँ मसीह का चित्र है, उस छोटी सी भूसे की झोपड़ी में। और ये बिल्कुल ठीक बात थी, उसके माता पिता उठ खड़े हुए, और ये उनका नाम, यही जो वो था, और हर चीज वे ना समझ सके। मैंने पीछे देखा और उसे दर्शन में वहाँ खड़े हुए देखा, बिल्कुल सीधा जितना हो सकता है, कभी नहीं उठा था अपने जीवन में, वो इसी प्रकार से जन्मा था। मैंने कहा, प्रभु यीशु उसे चंगा करता है, यहाँ तक कि वो अपनी सही मनोस्थिति में भी नहीं था, जाने का यत्न कर रहा था, ओ बा 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 इस प्रकार से। और मैंने जंजीर पकड़ ली और इस प्रकार से हिलाई। मैंने कहा, यीशु मसीह पुत्र तुम्हें चंगा करता है, अपने पैरों पर खड़ा हो। और वो वहाँ खड़ा हो गया, आंसू बहने लगे उसके काले पेट के ऊपर। जैसे ही वो इस प्रकार से नीचे गया, मैंने देखा 30,000 कंबल ओढ़े गांव वासियों ने अपना हृदय यीशु मसीह को दिया। जब किवानीज क्लब पर, अब मैंने कहा, और उन्होंने मुझे बताया मैं पवित्र शोर करने वाला होने को था जब मैंने बैप्टिस्ट कलीसिया छोड़ी, इसलिए मैं सब लोगों के साथ संगति कर सकता था। उन्होंने कहा, आप क्यों पवित्र शोर करने वाले हो जाएंगे? मैं वहाँ अपने बैप्टिस्ट भाइयों के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा, आप लोगों ने वहाँ मिशनरी भेजे पिछले 150 वर्षों से, मैंने उनमें क्या पाया? अब भी मूर्तियां लिए घूम रहे हैं, परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ यीशु मसीह की, 30,000 लोगों ने एक बार में मसीह को स्वीकार किया। अब मैं आप महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ, आप जानती हैं उन स्त्रियों का क्या हुआ? मैंने कहा, ठीक उन्हीं आधारों पर जहाँ आप खड़ी हैं, पवित्र आत्मा आपको भर देगा। और जब उन्होंने अपने हाथ मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार करके उठाए, और जब वे वहाँ से नंगी चली गईं, नंगी अब कुछ नहीं वरन छोटा सा टुकड़ा कपड़े का सामने, और जब वे वहाँ से चली गईं, उन्होंने अपने हाथ इस प्रकार से मोड़ रखे थे क्योंकि वे पुरुष की उपस्थिति में थी मसीह को स्वीकार कर लेने के पश्चात। अब कैसे हम बहनों, कैसे हम इस राष्ट्र में जहाँ हम विश्वास करने का दावा करते हैं और हर वर्ष वे उतार देती हैं, जब वो व्यक्ति जिसने कभी मसीह का नाम भी नहीं सुना, केवल मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया था, नहीं आप उन्हें नहीं बता सकते कि वे नंगे थे या नहीं, जानते नहीं, परंतु जाने के लिए उन्होंने स्वयं को इस प्रकार से ढांप लिया था, अगले दिन यूं 2 दिन बाद आप उन्हें कपड़े पहने पाएंगे किसी भी प्रकार। ओ प्रभु, कहीं कुछ गड़बड़ी है, ये धर्म विज्ञान घुमाया हुआ है। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ, जैसे कि उसने उस व्यक्ति के साथ किया था जो सेना कहलाता था, हम उसे कपड़े पहने हुए उसकी सही मस्तिष्क की स्थिति में पाते हैं। और मैंने विश्वास किया, ये लोगों पर आत्मा है जो उन्हें अमेरिकनवाद और फ्रांसवाद में ले जाती है और सब प्रकार की संसारिकता और कलीसियावाद में। परंतु उन्हें एक बार उस गुरु के पास आने दें और वे दरवाजे पर खटखटाहट का अनुभव करेंगे, वे कपड़े पहन लेंगे और महिलाओं और पुरुषों के समान व्यवहार करेंगे और वे नया जन्म पाए मसीह होंगे। आमीन, जी हाँ। अब मैंने कर दिया, 12 बजने में 20 मिनट हैं, बस थोड़ी सी देर और मैं कुछ को छोड़ दूं। एक क्षण, कुछ पवित्र लेख में एक और दरवाजा खोलना चाहता हूँ, क्या ये ठीक होगा? अगला दरवाजा वहाँ विश्वास का है। देखिए, आपका निजी जीवन, अब आइए विश्वास को खोलें, उनके सारे छल्ले देखिए, परंतु आइए विश्वास में चलें। आप जानते हैं, कुछ समय पहले मैं एक अस्पताल में था और एक महिला की शल्य चिकित्सा होने वाली थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा, भाई बणम, मैं पिछड़ी हुई हूँ, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने कहा, हाँ माँ, मैं करने के लिए प्रसन्न हूँगा। मैंने कहा, आप पिछड़ गई हैं? हाँ। मैंने कहा, अब हम थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, एक मिनट में मैं आपको पवित्र वचन पढ़ दूँ। वहाँ एक महिला बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी ओर देखा, वास्तव में अजीब सी, वो उसका पुत्र लगभग 20 वर्षों का होगा, एक फैशन परस्त, और वो वहाँ खड़ा हुआ मेरी ओर इस प्रकार से देख रहा था। और मैंने कहा, हाँ माँ जी। मैंने कहा, मैं उसके लिए पवित्र वचन पढ़ दूँ, यद्यपि तुम्हारे पाप अग्रवाणी रंग के हों, वे बर्फ के समान श्वेत हो जाएंगे, यद्यपि वो लाल रंग के भी हों, वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और ओ, ये मैंने उसके लिए पढ़ा। मैंने कहा, यदि आप भटक गई हैं, देखिए, आप परमेश्वर से अलग हो गई हैं, परंतु परमेश्वर आपसे कभी अलग नहीं हुआ, या फिर आप मुझे नहीं बुलाती। वो रोने लगी। मैंने कहा, हम प्रार्थना करेंगे। वो महिला जो अगले पलंग पर थी बोली, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। मैंने कहा, हाँ माता जी। उसने कहा, पर्दा खींच दो। मैंने कहा, क्या आप मसीह नहीं हैं? उसने कहा, हम मेथोडिस्ट हैं। मैंने कहा, इसका इससे क्या लेना देना, ये इससे अधिक कहना और कुछ नहीं, आप एक अनुभवहीन थी, यदि आप सुअरों के बाड़े में हैं। मैंने कहा, इसका कोई मतलब नहीं, समझे? परंतु आप देखिए, ये कहाँ से आया, अपनी धार्मिकता से, ये हमारे विश्वास के विरुद्ध है। मैंने कहा, हम अपनी कलीसिया में दिव्य चंगाई नहीं चाहते, या इस प्रकार की चीज। देखिए, मेरा अर्थ है, वे इस दरवाजे के भीतर नहीं होने देंगे, ये हमारे विश्वास के विरुद्ध है। केवल एक ही विश्वास है, एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा। वो विश्वास, मेरा विश्वास तुझे देखता है, तू कलवरी के मेमने, दिव्य बचाने वाला। अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी सुनिए, मेरे सारे अविश्वास को दूर कर दे। पाप, पाप केवल एक ही पाप है, वो अविश्वास। एक व्यक्ति जो पीता है वो पापी नहीं है। देखिए, वो पाप नहीं है। पीना पाप नहीं है, व्यभिचार करना पाप नहीं है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये पाप नहीं है, ये अविश्वास के फल हैं। यदि आप विश्वासी होते तो आप ये नहीं करते। देखा, केवल दो ही हैं, आप विश्वासी हैं या एक अविश्वासी, ये या वो। आप ये सब चीजें नहीं करते और इस प्रकार से धर्म का पालन, केवल इसलिए क्योंकि आप अविश्वासी हैं। यदि आप विश्वासी हैं तो ये वचन है जिस पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मसीह वचन है, समझे? और इसलिए आप बस एक अविश्वासी हैं, क्योंकि आप किसी रीति रिवाज का विश्वास करते हैं, या किसी सिद्धांत मत का जो कि बाइबल में मिलाया गया, या कुछ और नामधारी करते हैं। परंतु वास्तविक विश्वासी वचन के साथ स्थिर रहता है, और परमेश्वर उस वचन के द्वारा कार्य करता है, उसी के द्वारा उसे घटित करता है, इसी पीढ़ी में जिसमें हम जीवित हैं। और अब ध्यान दें, आप कहते हैं, ओ मैं, भाई बणम, प्रभु, भाई वो ठीक बात है, वहाँ बहुत से खतना रहित थे, फिलिस्तीनी भी एक बार गए, और मिस्रियों का झुंड, उसने मूछ सा के पीछे चलने का यत्न किया कि लाल सागर को पार कर जाए, परंतु अंत में जैसे येन और जमरेस ने मूसा का सामना किया, अंत के दिनों में हम वही चीजें पाते हैं, बाइबल ने कहा। अब थोड़ा सा आगे यीशु ने यहाँ कहा, इस युग में, क्योंकि तू ये कहता है, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। जरा देखिए, आज हम कैसे हैं, धनवान कलीसियां जो कभी हुई, और आप जानते हैं, आप पेंटिकॉस्टल बहुत अच्छे होते थे यदि आप बाहर खंजड़ी के साथ होते कोने पर, जैसे आपके पिता और माताएं थीं। परंतु अब आपके पास उनसे अच्छे आराधनालय हैं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाले, परंतु परमेश्वर का वो आत्मा कहाँ है जो उनमें होता था? तुमने वास्तविक चीज छोड़ दी, क्योंकि तू कहता है मैं धनी हूँ। याद रहे, बोलने के लिए ये पेंटिकॉस्टल है, क्योंकि पेंटिकॉस्टल युग अंतिम युग है। देखिए, ये सारी बेदारियां जो हमारी हुई थी, कोई भी संगठन आरंभ नहीं हुआ, कोई नहीं होगा, ये अंत है। गेहूं अब पक गया है, ये पत्तों से होकर आ गया, और डंठल और भूसा, और अब ये गेहूं है। देखिए, और नहीं होगा। उन्होंने अंतिम वर्षा आरंभ की है, परंतु ठीक बरसी है, कोई भी चीज कहीं भी होगी, वे कहेंगे ये गेहूं आ रहा है। ध्यान दें, और क्योंकि आप कहते हैं मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, किसी चीज की कमी नहीं, और तू ये नहीं जानता कि तू बेचारा, कंगाल, अंधा, नंगा, और नहीं जानता, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, ओ प्रभु, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, लुदेकिया, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ और सम्मति देता हूँ कि मेरे पास आ जा, और आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, श्वेत वस्त्र ताकि तेरा नंगापन ना दिखे। इन चीजों को उतार दें जो पहनना चाहिए, वो पहन ले मसीह की धार्मिकता, वचन, ना कि मेरी धार्मिकता, उसकी धार्मिकता। और मैं तुझे ये सम्मति देता हूँ कि आ जा, कुछ सुरमा ले ले ताकि तू अपनी आंखों का अभिषेक कर सके, ताकि तू देख सके। सुरमा, मैं कैंट की वासी हूँ, मैं पहाड़ों में जन्मा हूँ। हम एक छोटे से स्थान ऊपर के कमरे में रहते थे और हम बच्चों ने छोटी बल्ली की सीढ़ी रख दी थी ताकि हर रात्रि उसमें जाएं, और हम लेट जाते। वे हमारे ऊपर तिरपाल या टाट का टुकड़ा डाल देते। जब बर्फ पड़ती तो पुराना पतला लकड़ी के तख्ते में से सितारे। और कितने जानते हैं कि पतले लंबे तख्ते क्या होते हैं। भाइयों, मैं क्यों नहीं यहाँ पर ऊपर से कुछ पहनता नहीं, मैं ठीक अपने घर में हूँ। भाई वो क्लैपबोर्ड सिंगलेस, कितने जानते हैं भूसे का गद्दा क्या होता है। अब आप क्या जानते हैं। मैंने सोचा मैं किसी चीज के विषय में अजीब धार्मिक अनुभूति कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब मैं ठीक अपने घर में हूँ, ये अच्छा है। कुछ वर्षों पहले तक मैंने कभी भी कुछ और नहीं जाना। कितने जानते हैं पुराने लैंप क्या होता है और पुरानी चिमनी। आप जानते हैं ये पुराना बड़ा चांद और उसके एक और उल्लू। घर में वे छोटे छोटे हाथ होते थे जिन्हें वो चिमनी साफ करनी होती थी। आप जानते हैं मुझे वो पुराना छींटे मारने वाला लेना होता था और वो मुझ पर भी छींटे मारता, इसलिए मैंने लैंप की चिमनी को लिया और इसे वहाँ उल्टा कर दिया जिससे वो छींटे ना पड़े। हाँ, वास्तव में मेरे दादा जाल लगाने वाले थे। मेरी माँ की माँ आरक्षित लोगों में से थी। उसने चोरुकी से इंडियाना लड़की से विवाह किया था, वहाँ केंटकी, और टेनिसी में आरक्षित थे। आप जानते हैं कहाँ, चोरुकी घाटी में। और वे शिकार खेलते और फंदे जाल बिछाते सारे समय। इस प्रकार से वे अपना भरण पोषण करते और हम बच्चे वहाँ लेटते। क्यों, कभी कभी बहुत ठंडा होता और उनमें से हवा आती और हमारी आंखों में ठंड लग जाती और हमारी आंखें चिपक कर बंद हो जाती। आप जानते हैं माँ इसे पदार्थ कहती थी, मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी, परंतु हमारी आंखों में ठंड लगती और ये ठंडी हो जाती। वो कहती तुम्हारी आंखों में पदार्थ आ गया है क्योंकि अंदर हवा घूमती थी, ये रात्रि में तैयार होता है, हमारी आंखें सूज कर बंद हो जाती। और माँ वहाँ प्रातः सीढ़ी से आती, जब वो बिस्कुट बना लेती वो एक प्रकार के पौधे से राब बनाती और टेबल पर रखती और वो कहा करती, बिली। मैं कहता, हाँ माँ, तुम और एडवर्ड नीचे आओ। माँ, मैं देख नहीं सकता। मैं अपने भाई को पुकारता, हम उसे हम्पी कहते। मैं कहता, वो भी नहीं देख सकता, हमारी आंखें देखो, हमारी आंखों में पदार्थ आ गया है। वो कहा करती, ठीक है एक मिनट। और नाना जब वे कून पकड़ा करते, कितने जानते हैं कि रिकून क्या होता है। यही जो वो कून पकड़ा करते, वो उसमें से चर्बी निकालते और बर्तन में रखते, और वो कून की चर्बी हमारे परिवार में हर चीज का इलाज थी। वे बिगड़े जुकाम के लिए हमें दिया करते, उस पर तारपीन का तेल डालते और कोयले का तेल, और हम खरखरे गले के लिए उसे निगलते। फिर उस कून की चर्बी को गर्म करते, वो आती और हमारी आंखें मलती और हमारी आंखें खुल जाती। देखिए ये कून की चर्बी जिससे ये हुआ, समझे। अब भाई बहनों, हम ठंडी हवाओं से होकर निकले कलीसियाओं में से, और ये ठीक बात है। बहुत सा धार्मिक ठंडी हवाएं आई, सबको ठंड लग गई और बहुत से लोगों की आंखें पूरी रीति से बंद हो गईं, और वहाँ बड़ी कलीसियाओं का संगठन आ रहा है जो कि आप में से प्रत्येक को इसमें जबरदस्ती इसमें ले लेगा। वे वचन से अलग हो रहे हैं, हमारे अपने ही झुंड। मैं संदेश के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, न कि भिन्न होने को, परंतु प्रेम के कारण। प्रेम सुधारात्मक है, वापस आओ, उस चीज से अलग रहो। आप सेवा करने वाले भाइयों, में चिंता नहीं करता आपका झुंड क्या करता है, इससे अलग रहो, इससे बाहर रहो। वो पशु की छाप है, इससे अलग रहो। देखिए यीशु इस लुदिकिया युग में खटखटाता रहा है, देखिए उन्होंने उसे बाहर कर दिया। वो व्यक्तिगत पास आने का यत्न कर रहा है, ना कि संस्थाओं और लोगों के झुंड के पास। नहीं, वो एक को यहाँ, एक को वहाँ लेने का यत्न कर रहा है। जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूँ मैं ताड़ना देता हूँ। जैसे छोटे भाई को दर्शन मिला और कहा कि उसे दर्शन आया और कहा, यही ज्योति जो तुमने पाई तुम्हारी मृत्यु का कारण भी है, समझे। जितनों से मैं प्रेम रखता हूँ मैं ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और वापस आ। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। अब देखिए कून की चर्बी, ये कोई भला ना करेगी, परंतु एक सोता लहू से भरा इमैनुएल की नसों से निकला, जहाँ पापी उसमें डूबते हैं, अपने अधर्म के दाग धोते हैं। उस मरते हुए चोर ने देखकर आनंद किया, वो सोता उसके दिन में, वहाँ मैं हो सकता जैसे वो पापी। उसने मेरी आंखें खोली अपने सुरमे से, उसका आत्मा नीचे आया और बाइबल को सरगर्म किया, उसकी आंखों का सुरमा। मैं इसे नहीं देख सकता था, मैं साधारण बैप्टिस्ट पादरी था, परंतु एक दिन उसने अपना आत्मा नीचे भेजा, ना कि कून की चर्बी ने किया। उसने गर्म किया, परंतु उसने पवित्र आत्मा और आग को भेजा। एक छोटा सा सुरमा मेरी बाइबल के आर पार गया, मेरी बाइबल, और मैं अपनी आंखों से देख सका। मेरा अर्थ मेरी आंखों के आर पार, इस प्रकार से मैं अपनी बाइबल देख सका और मैंने देख लिया, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। एक और छोटी सी कहानी, क्या हमारे पास समय है? हाँ हाँ, तो फिर हम चलेंगे। वहाँ दक्षिण में बूढ़ा काला व्यक्ति था और उसका पास्टर, मैं उसे जानता हूँ, एक सज्जन बूढ़ा, हम उसे गाबे पुकारते, उसका नाम गैब्रियल था और हम उसे गाबे कहकर पुकारते। वो सदा पास्टर और मैं मिलकर शिकार पर गए, वो बूढ़ा काला भाई था और हम शिकार पर गए, और इस प्रकार से बूढ़ा काबे शिकार को किसी भी व्यक्ति से अधिक पसंद करता जो कि मैं जानता हूँ, परंतु वो अच्छा निशानेबाज नहीं था। इस प्रकार एक दिन उसका पास्टर और वो शिकार पर गए और हम उसे कभी भी कलीसिया में नहीं ला पाए, वो ये नहीं करेगा, वो कलीसिया में नहीं आएगा। उसने कहा, ओह, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ ढोंगी होते हैं। मैंने कहा, परंतु गाबे जब तक तुम बाहर रहोगे वे तुमसे अधिक बड़े हैं, तुम उनके पीछे छिपे रहो। मैंने कहा, तुम उनके पीछे छिप रहे हो, तुम उन लोगों से छोटे हो, वे वहाँ जाते हैं और यत्न करते हैं, देखा। और इसलिए उसने कहा, मैं आपके विषय में सोचता हूँ श्री बिल, परंतु कहा, मैं जानता हूँ बूढ़ा जोन्स वहाँ जाता है और वो कुछ नहीं है, वो हवा में गोली चलाता है और ये सब। मैंने कहा, ठीक है गावे, देखो ये ठीक बात है, परंतु स्मरण रखो जोन्स इसके लिए उत्तर देगा, तुम्हें नहीं देना, तुम समझे, यदि तुम जाओ। मैंने कहा, तुम्हारा पास्टर अच्छा है, ओ पास्टर जोन्स इस राष्ट्र में बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैंने कहा, उसे तुम्हारा आदर्श होने दो, यदि तुम उससे आगे ना देख सको तो उसे तुम्हारा आदर्श होने दो। एक दिन भाई जोन्स ने कहा, बूढ़े गाबे को शिकार पर ले जाओ, और कहा, उस दिन हमें बहुत खरगोश और चिड़िया मिली कि मुश्किल से उन्हें बांध पाए, और कहा, सांझ को आओ, कहा, बूढ़ा गाबे पीछे से आ रहा है और पूरी तरह से तैयार, आप जानते हैं इस प्रकार से। और उसकी पत्नी वास्तविक ईमानदार मसीही थी, उसका स्थान वहाँ पर था, पवित्र आत्मा से भरी हुई महिला, और वो सदा अपने कर्तव्य पे रहती, इसलिए वो, आप जानते हैं, बूढ़ा गाबे पीछे से आ रहा है। और पास्टर जोन्स ने कहा, उसने चारों ओर देखा, वो देख सकता था, बूढ़ा गाबे उसके कंधे की ओर देख रहा था, इस प्रकार से सूर्य अस्त हो रहा था, कहा, काफी नीचे था, ठंडा हो रहा था, कहा, कुछ देर बाद, कहा, वो साथ साथ चल रहा था, कहा, बूढ़े गावे आओ, उसकी बंदूक के नाल पर खरगोश और चिड़िया लटके हुए थे और आदि आदि। कहा, उसने पास्टर के कंधे को थपथपाया और कहा, पास्टर, घूमकर कहा, हाँ गावे, क्या बात है? इसलिए उसने देखा, उसके काले गालों पर आंसू बह रहे थे जहाँ उसकी दाढ़ी सफेद हो रही थी। वो कहता, पास्टर, मैं इस किनारे पर लगभग आधे घंटे से चल रहा हूँ, कहा, मैं डूबते हुए सूर्य को देख रहा हूँ, कहा, तुम जानते हो मेरी ये सफेद दाढ़ी और मेरे बदलते हुए बाल, तुम जानते हो मेरा सूर्य भी डूब रहा है पास्टर, कहा, ये ठीक बात है गाबे, और वो रुक गया और घूम कर बोला, तुम्हारे साथ क्या मामला है? उसने कहा, मेरा सूरज भी डूब रहा है। उसने कहा, तुम जानते हो क्या? कहा, मुझे सोचना पड़ रहा है। उसने कहा, जैसे कि मैं वहाँ पीछे पीछे चल रहा था। उसने कहा, तुम जानते हो, कहा, प्रभु को मुझसे प्रेम करना ही चाहिए, कहा, निश्चय ही गाबे वो करता है, कहा, तुम जानते हो मैं कच्चा निशानेबाज हूँ, कहा, मैं कुछ भी नहीं मार सकता, परंतु कहा, हमें इस मांस की घर में बहुत आवश्यकता थी, और कहा, देखो उसने कितना ढेर सारा शिकार मुझे दिया है, ये चिड़ियाएं और ये खरगोश। उसने कहा, ये अगले सारे सप्ताह तक हमारे लिए बहुत है, कहा, उसने मुझसे अवश्य ही प्रेम किया क्योंकि मैं कुछ भी नहीं मार सकता, आप जानते हैं, कहा, मैं ये नहीं मार सकता था, परंतु जरा देखें उसने मुझे क्या दिया। फिर उसने कहा, उसने मुझसे प्रेम किया ही है, या फिर वो मुझे ये नहीं देता, कहा, ये ठीक बात है। और उसने कहा, मेरे दरवाजे पर एक विचित्र सी खटखटाहट थी, वहाँ पर उसने मुझसे घूमने को कहा, कहा, गावे, तुम्हारा सूर्य भी डूब रहा है, कहा, पास्टर, आप जानते हैं मैंने क्या किया पास्टर? उसने कहा, मैंने उससे प्रतिज्ञा की है। उसने कहा, गावे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कहा, मैंने कौन सा उपदेश दिया जिससे तुम्हें ये अनुभव हो रहा है? उसने कहा, पास्टर, या कहा, अब एक मिनट रुको, कहा, गायन मंडली ने क्या गाया? उसने कहा, ओ निश्चय ही मैं वहाँ कलीसिया के गीत पसंद करता हूँ पास्टर। उसने कहा, हर प्रवचन जो आप प्रचार करते हैं पसंद करता हूँ क्योंकि वे अच्छी पुस्तक में से आते हैं और मैं जानता हूँ कि वे ठीक हैं। परंतु कहा, ये वो नहीं था। कहा, उसने हाल ही में खटखटाया और इधर की ओर देखा और देखो मेरे लिए कितना भला है, उसने मुझे क्या दिया है। उसने कहा, रविवार प्रातः मैं वहाँ सामने चलकर जाने वाला हूँ जहाँ आप खड़े होते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना दाहिना हाथ देने जा रहा हूँ, कहा, क्योंकि मैंने अपना हृदय प्रभु को दे दिया यहीं इस पहाड़ पर। उसने कहा, मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ और अपना स्थान अपनी पत्नी के बराबर में लेने जा रहा हूँ, और मैं तब तक वहीं रहूंगा जब तक प्रभु मुझे ऊंचे से ना पुकारे। देखिए, उसने बस घूमकर देखा और देखा परमेश्वर उसके लिए कितना भला था। मैं एक मिशनरी हूँ, यदि आप इन आँखों के द्वारा देख सकें जिनके द्वारा मैं अब देख रहा हूँ, इंडियन स्थान को देखता हूँ, वे छोटे भूखे लोग, माँ सड़क पर भूखी है, उनके छोटे बालक रो भी नहीं सकते भूख से। और जरा सोचें आज हमारे पास क्या है। उन कारों को देखें जिनमें आप आते हैं, कपड़ों को देखें जो आप पहन रहे हैं, देखिए आप कितने धनी हैं। मित्र, क्या आप उस खटखटाहट का कहीं अनुभव नहीं कर सकते? हम प्रार्थना करें। अपने झुके हुए सिरों के साथ और हमारे हृदय जैसे कि मिनटें अब बीत रही हैं, मध्य दिन के लिए जब तक 7 मिनट नहीं हो जाते। मेरे भाई बहनों, विज्ञान हमें बताता है मध्य रात्रि के लिए जब तक 3 मिनट नहीं रह जाती। अब यदि आप आसपास देख सकें और मिनट के लिए सोचें, आपके छोटे छोटे बालक आपके पास बैठे हैं, कितने छोटे छोटे दर्द। भाई अपनी अच्छी पत्नी की ओर देखें और सोचें, कितने पुरुष जिनका मूल्य लाखों डॉलर का है और अपनी स्त्री को अपने सारे हृदय से प्रेम करते हैं और वो शराब खानों में उड़ती फिरती है, वो उससे प्रेम करने वाली महिला के लिए अपने लाखों दे देता है, जिस प्रकार अपनी पत्नी आपसे प्रेम करती है। और आप पत्नी, कितनी स्त्रियां यहाँ आज प्रातः, कितनी माताएं अपने छोटे बालकों के साथ, कितने पिता, क्यों वो बहुत सारे व्यक्ति हैं, पलंग की ओर देखें, देख रहे हैं एक छोटा अपंग बेचारा, और देखिए कि आपके पास कितने अच्छे बालक हैं, समझे, और बहुत से बूढ़े, संभव है ओ परमेश्वर, बहुत सी बातें, यदि आप जरा देखें वो हम अमरीकनों के लिए कितना भला है। अब क्या आप अनुभव नहीं कर सकते कि इस प्रातः आप थोड़ा सा सुरमा लेना चाहें? मेरी आँखों को और खोल दीजिए पिता, प्रभु मेरी आँखों को खोल दे, जैसे कि हमारी प्रिय बहन ने गाया, उसकी आँख गौरैया पर है, छोटी गौरैया, और मैं जानता हूँ वो मुझे देखता है, अब वो ठीक आपको देख रहा है, क्या आप सुन सकते हैं? कहीं भीतर इस प्रकार की धीमी खटखटाहट, इस प्रातः में मिलने आ रहा हूँ, ये महान सम्मान जिसका कभी दाम चुकाया जा सकता था, यदि आप अपने हृदय पर खटखटाहट का अनुभव कर सकते हैं, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, कहें प्रभु इसके द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा, आपके बाद से आपका अनुग्रह मैं आपके जितना समीप हो सकता हूँ कैसे रहूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि आपसे कैसे मांगूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सहायता और अनुग्रह के द्वारा, आज और आज के बाद मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि कोई मनुष्य, अब स्मरण रखें वो कहां खटखटा रहा है, खलियान में नहीं, शराब खाने में नहीं, वो कहीं नहीं खटखटा रहा है, कलीसिया के द्वार पर। यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज सुनेगा और मेरे लिए खोलेगा, तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। प्रिय परमेश्वर, ये छोटे टूटे मिले जुले कुछ वचन जो इस प्रातः बोले गए, जैसे भी हो पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में इसका अनुवाद करे। अब वहाँ बहुत से हैं प्रभु, संभव है सैकड़ों में से 20 या 30 लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, मेरे पास कोई विधि नहीं कि जानूं इनकी क्या आवश्यकता है प्रभु, परंतु मैं जानता हूं कि दिन का मध्य कुछ मिनटों से आगे निकल गया, और इसी प्रकार प्रभु का आगमन फिर भी जीवन पर इस बर्फ के पिघलने से पहले हमारा बुलावा आ जाए, और यही क्षण हो जो सारे भविष्य को बदल देगा कि ये यहाँ छूटेगा या ऊपर जाएगा। प्रिय परमेश्वर, हम यीशु को नम्रता में ग्रहण करते, हम उसके सारे वचनों को ग्रहण करते हैं, प्रभु हमें भर दे, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे, ताकि हमारे जीवन स्वयं से फलों को धारण करें, प्रभु इसे प्रदान करें, हमारी बहुत सी त्रुटियों को क्षमा करें, ओ हम इनसे भरे हुए हैं प्रभु, और हमारे पास कुछ नहीं जो हम चढ़ा सकते हैं प्रभु, क्योंकि हर चीज जो हमारे पास है आपने ही हमें दी, जैसे कि गाबे ने कहा इस छोटी सी कहानी में जो हमने सुनाई, आप निश्चय ही हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, या आप ये नहीं करते, और सोच कर कि ये लोग यहाँ बहुत सुबह से बैठे हैं, 8 बजे से बैठे हुए हैं, 4 घंटों से यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, ये लोग आपसे प्रेम करते हैं, अब पिता क्या आप पवित्र आत्मा का सुरमा भेजेंगे कि इनकी आंखें खुलें, संभव है हम ये जो यहाँ नगर में हैं आज रात्रि बेदारी के लिए दौड़ें और ऐसी वर्षा हो, प्रभु इसे प्रदान करें। पुराने रीति की बेदारी यहाँ नगर में आरंभ हो, इसे प्रदान करें। हर व्यक्ति को आशीष दें जो योगदान दे रहा है, आपके दास समस्त संसार में जो अपनी शक्ति लगा रहे हैं, प्रभु उनके साथ हों, उनकी सहायता करें। हमारी आंखें खोलें कि हम देख सकें अधिक और अधिक मसीह की समानता। प्रभु इसे प्रदान करें, हमारे पापों को हमें क्षमा करें। और अब ये जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं पिता, मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। अब मैं आपके अपने वचन का उल्लेख करता हूँ प्रभु, जो कि आकाश और पृथ्वी असफल हो जाएंगे, परंतु आपने कहा वो जो कि व्यक्तिगत सर्वनाम है, वो जो मेरा वचन सुनता है। प्रभु हो सकता है वो टूटे हुए हों और सादे, परंतु किसी ने उनकी सुनी है। बीज गिरा वो जो मेरे वचन सुनता और उस पर विश्वास करता जिसने मुझे भेजा, क्योंकि उसने ये किया उसके पास वर्तमान काल अनंत जीवन है, और भविष्य में वो न्याय में नहीं आएगा परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। प्रभु इन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, इन्होंने हर वैज्ञानिक नियम तोड़ दिया गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का जो हमारा हाथ नीचे रखता है, परंतु इन्होंने ये सिद्ध किया है कि इनमें आत्मा है जो दरवाजे की खटखटाहट को सुन सकी और अपना सीधा हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। बाहर आ गए, अब द्वार खोलें, खोलें प्रभु और अंदर आए, हम आपके हैं, हमें स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
I love Him. I love Him because He first loved me and first chose
me. मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी वृक्ष पर। आप उससे प्रेम करते हैं? यदि हम अपनी आंखें बंद कर सकें एक क्षण के लिए, अब अपने हृदयों से अपने उठे हुए हाथों के साथ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। प्रभु इस प्रातः हम आपकी खटखटाहट को स्वीकार करते हैं, मेरे हाथ उठे हुए हैं प्रभु, हमारे साथ हाथ सारे हाथ उठे हुए हैं, और अब अंदर आए प्रभु यीशु, हमारे हृदयों में आकर हमारे साथ भोजन करें और हम तेरे साथ भोजन करें। कलवरी के वृक्ष पर क्या आप उससे प्रेम करते हैं? ओ मैं सोचता हूँ वो बहुत ही अद्भुत है, क्या आप नहीं? क्या आप उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करते? एक प्रकार से आपको साफ कर रही है, तो फिर वास्तविक धार्मिक अनुभूति का अनुभव करें, अच्छा अनुभव करें इस विषय में। कुछ है देखा? मेरा विश्वास तुझे देखता है, तू कलवरी के मेमने दिव्य बचाने वाले, अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सुने, मेरे सारे पापों को ले जाए, और मुझे आज के दिन से मैं संपूर्ण तेरा हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब हम इस सुंदर भजन के अगले पद को गुनगुनाते हैं, कलीसिया का पुराना भजन, मैं चाहता हूँ कि आप किसी से हाथ मिलाएं, अपने बैठने के स्थान पर रहें, कहें परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। हम ये करें, कल परमेश्वर आपको आशीष दे और भाई विलियम मैं यहाँ बहुत आने देता हूँ। जरा सोचे मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल का हाथ पकड़ता है, बैप्टिस्ट ने प्रेस्बिटेरियन का पकड़ा हुआ है। ओ आज के दिन से मैं संपूर्ण तेरा हूँ। अब जैसे हम धीरे धीरे गाते हैं अपने हृदय की गहराई से, आप जानते हैं मंजाई के बाद ताड़ना का संदेश, मैं सोचता हूँ कि आत्मा में आना अच्छा है और पवित्र आत्मा की मिठास में गाएं। ओ भाइयों के लिए ये कितना मधुर है कि एक साथ मिलकर रहें। बाइबल ने कहा ये तो अभिषेक के तेल के समान है जो हारून की दाढ़ी पर था, जो कि उसके बागे की छोर तक पहुंचा। आप शानदार लोग हैं। यहाँ पर मैं फिर वापस आने की आशा करता हूँ। इसके पहले यीशु मुझे बुलाए या शताब्दी, यदि मैं नहीं आता तो मैं वहाँ सामने आपको नदी के पार मिलूंगा। मैं आपको नदी पर मिलूंगा। आमीन। मैंने नियुक्त कर लिया। जबकि जीवन के अंधकार पथ पर चलता हूँ और मेरे चारों ओर दुख बिखरा हुआ, तू मेरा मार्गदर्शक बन जा, घने अंधकार को दिन में बदल दे, जिस उजियाले में वे बात करते हैं। दुख के भय को मिटा दे, ओ आज के दिन से मुझे संपूर्ण तेरा हो जाऊं। हर द्वार खुला हुआ है, ओ जरा छू दे छोटे बटन और इन सब को देख कि सब ठीक चक्कर में घूमे। कहे प्रभु यीशु भीतर आ, मेरा प्रभु बन जा, मेरा सब कुछ। ओ मुझे आज के दिन से आपको द्वार पर ना खड़ा होने दूं। संपूर्ण तेरा हूँ। आप जिन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं और प्रभु के ओर अधिक अगुवाई चाहते हैं, मैं कहता हूँ आज रात्रि बेदारी में जाएं और मैं निश्चित हूँ कि जो पास्टर वहाँ पर है आपको यहाँ से होटल तक ले जाएगा। उसके पास 6 पेंस हैं या जो भी दिया गया, कि चिंता करे और दाख और तेल उंडेलने के लिए वो कार्य पूरा कर सकता है। अब परमेश्वर आपको आशीष दे। अब सेवा को मैं समझता हूँ भाई विलियम को सौंपता हूँ या जो भी है। ठीक है।